نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور قرآن 2020 آج اس میں ہم پارہ نمبر 27 کریں گے 27 قال فما خطبكم یہ اس پارے کا نام ہے حقیقت یہ کہ کسی بھی پارے کے آغاز میں جو بات آتی ہے وہ انسان کے لیے سوچ کو بھرنے والی ہوتی ہے لیکن شاید ہم قرآن پاک کو اس طرح نہیں لے پائے ابھی تک جس طرح کے لینے کا حق تھا بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کرانے والے اپنے آپ کو اس بات سے بھی محروم کر لیتے ہیں کہ قرآن کے مزاج کو سمجھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے ہم آج کے پارے کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہمارے اور اسلام اور قرآن کے بیچ میں سے اجنبیت کی دیواریں ہٹ جائیں آج ایسے لگتا ہے کہ اصل اسلام تو کہیں اور ہے اور ہم کچھ اور ہیں جدی پشتی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلمان ماں اور باپ کے گھر میں پیدا کیے جانے کے باوجود آج ہم میں سے اکثریت جس فتنے سے دوچار ہے وہ ہے آج کے اس پارے کا تھیم کیا ہوگا ذرا سا سوچیے کیونکہ یہ چند جملے ہی اصل میں وہ جملے ہوتے ہیں جو ہمیں پورے پارے کو سمجھنے کے قابل کرتے ہیں یہ اصل میں ہمارا ایک نیویگیٹر ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور سب سے پہلے نیویگیٹر میں ایڈریس ڈالتا ہے پھر اس کے مطابق گاڑی ادھر سے ادھر چلتی جاتی ہے تو لکھیے آج کا فتنہ دین سے اجنبیت کا فتنہ ہے بدعو دیناً غریباً اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مصداق جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا یہی ہماری آج کی حدیث بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچتی ہے بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا غریباً فتوبا للغرباء اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی تھی اور یاد رکھیے کہ عربی میں لفظ غریب وہ لفظ نہیں جو آج میں عرب پور اور نیڈی کے طور پہ سمجھتے ہیں بلکہ غریب کہتے ہیں اجنبی کو سٹرینجر کو ایلین بن جانا مکہ کے جس معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے وہاں نام تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا ہی چلتا تھا نسبت انہی سے تھی خود کو مسلمان کہتے تھے لیکن ماں باپ اور باپ دادا کی روایات کے نام پہ کہیں کلچر کے نام پہ کہیں رسم و رواج کے نام پہ انہوں نے پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا کہ جس کو آج کہیے کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا جب قوموں کے اوپر اس قسم کا زوال آتا ہے کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نام کی نسبت رکھنے کو ہی اپنے جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھیں تو پھر دین پر یہ اجنبیت طاری ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا تھا کہ اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گی بس غربا یعنی ایسے سٹرینجرز اور ایسے ایلینز کے لیے خوشخبری ہو تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں دین پہ عمل کرنے والا ہمیں اجنبی دکھتا ہے اور دین کو صرف رسم کے طور پر لینے والا ہمیں ان لگتا ہے آپ اس کی اپنے آپ سے چند جملوں میں بات پوچھ لیجئے آج ہم نے اس کتاب کو کیا کر دیا اسلام وہ ہیرا تھا جو آج مٹی میں ملا ہوا ہے اور کسی کو اس کی قدر نہیں آج بدعت جانی پہچانی ہے سنتیں اجنبی ہو گئیں آج قرآن خوانی کا لفظ بہت ان ہے ایک جملے میں سمجھ آ جاتا ہے اصال ثواب سمجھ آ جاتا ہے وظائف سمجھ آ جاتے ہیں لفظ کے اندر لیکن کوئی کہہ دے کہ میں لفظی ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھوں گی ترجمہ اچھا یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بھائی یہ ہوتا ہے پھر ہم عربی کے اندر سے ہی اردو بغیر دیکھے انگلش کو دیکھے بغیر قرآن کو سمجھ اچھا اس کا اندر اب تم بہت نیک ہو گئی ہو اچھا میرے لیے دعا کرا لو یعنی آج ہمارا وہ حال ہو گیا کہ دین کے بیسک نارمز جس پہ دین کی فاؤنڈیشن تھی اس پہ اگر کوئی کھڑا ہو مثلا توحید سے بات کر لیتے ہیں جو آج صحیح معنوں میں توحید پہ آئے لا الہ الا اللہ کے عملی تقاضے نہیں بھائے لوگوں نے اس کو وہابی کا نام دے دیا یاد رکھیے جس معاشرے میں اللہ کے نبی تھے اور آپ نے نبوت کے دعوے کے بعد جب لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لوگوں کو بڑی عجیب لگی پڑھ چکے ہیں آپ لوگ سورہ صافات میں بھی ذکر ہے کہ کیا سارے الہوں کو ملا کر تو ایک الہ کرتا ہے اللہ کے نبی کو جو کڑوے جملے سننے پڑے تھے اپنے قریبیوں سے مکہ میں وہ یہی تھے کہ تو کیا باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ کر اب ایک نیا طریقہ لے آیا और हम इतनों से मांगते हैं फिर भी बेटे की जगह कभी बेटी ही मिल जाती है, और अब तुम ये कह रहे हो कि सबको छोड़कर सिर्फ एक को पुकारो, हम नहीं मानते। ये बड़ी अजीब लगी बात, याद कीजिए सीरत की वो झलकी। मैंने भी अपनी बचपन में शायद सीरत की किसी किताब में, या सीरत तो कौन पढ़ाता है, इस्लामियात की किताब में पढ़ी होगी, कि लोगों को इतना अजीब लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पे लब्बैक कहेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हाँ, इस पहाड़ के पीछे से अगर आप कहें कि दुश्मन आ रहा है तो हम इस बात को तो मान जाएंगे। तो याद रखिए, आज हम मुसलमान भी उसी दौर में आ गए। आज कोई 5 वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लग जाए तो लोग कहते हैं बहुत नेक है। तो ये तो बहुत नेक होने वाली बात नहीं है, ये तो मुसलमान होने की बात है। टू प्रे 5 टाइम्स इज नॉट टू बी रिलीजियस, इट्स टू बी मुस्लिम। लेकिन लोग दाढ़ी रखे हुए को देखेंगे, बड़ा बच्चा नेक है। वजह क्या है कि जब सब नहीं करते तो फिर जो थोड़ा सा करते हैं वही मारूफ होने लगते हैं। आज हमारे मियार बदल गए। हमने इस कुरान को वो कर दिया जो नहीं तामिल की किताब थी, हमने इसको दोहों की किताब बना दिया। जिंदों की किताब थी, हमने मर्दों के लिए बना दिया। अल्लाह ने इसमें कौमों के मंशूर रखे थे कि इसके मुताबिक कवानीन बनाओ, हमने इसको सिर्फ कौलो कसम की किताब बना लिया। तो आज का फितना ये है कि हम दीन से अजनबी हो गए, आज हम वो नहीं रहे जो हमें होना था, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हम अपने ही मुआशरों में अजनबियत का शिकार हो गए। क्या आज चंद लोग ही नहीं है आपके मुआशरे में, आपके खानदान में? जब वो आ जाएं तो लोगों को मसला पड़ जाता है, हाय अब ये नमाज भी पढ़ने का हुक्म देंगे, हम खाना नहीं खा सकते जब तक नमाज ना पढ़े मस्जिद में जाकर। और अच्छा ये निकाब और हिजाब वालियाँ आ गई, अच्छा फिर पार्टी में इनको अलग से कमरे में बिठा दो। आज क्यों नहीं बुलाते शादियों में हम अपने उन लोगों को कि जो इस्लाम पे अमल करते हैं? कहते रंग में भंग डलेगा, नहीं फिर बुरा होगा, फिर म्यूजिक चल रहा होगा, फिर कहाँ डालेंगे? हाँ वैसे दिल तो बड़ा ही चाहता है इनको बुलाएं, पर रहने दो। तो लिखिए, ये दीन से अजनबियत का फितना असल में ईमान की कमजोरी का फितना, और इस पर ज्यादा बात जात की होगी सूरत हदीद में जो पारे की आखिरी आयत है, कि जो उस दौर की सूरत है कि जब इस्लाम में नए नए लोग दाखिल हो चुके थे। दूसरी चीज़ इसमें हम समझेंगे सूरत वाक्या की रोशनी में, ये पारा तो क्या है, मुझे लगता है एक अल्लाह ताला का खजाना है जिसकी चाबी आज आपने मैंने अपने हाथ में रखनी है। सूरत अगर आप देख लीजिए तो वाकया 3 गिरोहों में से एक, पहले को तो हम कुछ समझते ही नहीं, हम कहते हैं वो तो इस खाबर शिमाल, हम तो नहीं है, और अल्लाह करे कि हम ना और ना हमारी नस्लें हों। लेकिन 2 गिरोह हैं, असहाबुल यमीन और सबिकून असाबिकून। इसकी रोशनी में हम वहां जाकर देखेंगे कि आज हम अधूरी कोशिशों पर मुतमईन रह गए, हम सिर्फ असहाबुल यमीन ही को टारगेट करते हैं। और आगे आप देखिए कि फिर सबिकून असाबिकून किसने बनना है? जो स्टूडेंट सिर्फ 33% मार्क्स लेने के लिए घर से निकलेगा, क्या वो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा? दुआ कीजिए वो पास हो जाए 33 पे तो भी बात है। हमने तो अपने गोल ही इतने छोटे बना दिए, हमें तो समझ ही ना आई ये बात कि हमें हो क्या गया। तो अधूरी कोशिशों पे मुतमईन रहने का फितना है, बस गुजारा कर लो। हम गुजारे के दीन पे राजी रहने वाले लोग हो गए, जैसे कहते चलो ना कोई बात नहीं गुजारा करो, और रह गई कोशिशें, रह गया हमारा भाग दौड़ करना। तो ये लामू सूरत हदीत में जाके पढ़ेंगे कि फ़ख्र करते करते दुनिया से आगे निकल कर हम मरने पे फ़ख्र करने लगे। आज हमारे दिलों में ये चीज़ें आ गईं कि लोग कौन किसका क्या स्टेटस, कौन कहाँ पढ़ा है। यानी आज सारी भाग दौड़ जो फ़र्स्ट तबेकुल खैरात की सूरत में होनी थी, या साबिकविला मगफिरत इनकी सूरत में होनी थी, वो दुनिया में हो गई। हम बचपन में खेलते रहते हैं, जवानियों में हम इधर उधर देखते रहते हैं, और बुढ़ापों में हम एक दूसरी चीज़ों पे फ़ख्र करते हैं, कौन किस क्लब का मेंबर, किसका बच्चा किस यूनिवर्सिटी में, किसकी बेटी का कहाँ रिश्ता हुआ, कौन छुट्टियाँ कहाँ गुजारता है, तफाखरुम बैनकुम। आज हम सिर्फ इस्लाम के नाम पे तफाखुर का शिकार हो गए, दीन तो हमारे लिए कोई खूबसूरत चीज़ नहीं रहा, और आज हमने हर चीज़ को ओकेजन बना दिया, फंक्शंस बना दिए। मरने पे भी जाएंगे तो थीम्स के साथ जाते हैं, ब्लैक कलर पहन कर आए, काले टेंट, काले रनर्स, और केटरिंग भी वहाँ होगी, और वहाँ लाइट मेकअप, फीका सा, ज़रा उदास फेस हो, ज़रा आंखों को रोया रोया कर दीजिए, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। सहाबियत के पास इतना वक्त नहीं था, सहाबा किराम ऐसे नहीं थे कि वो वहाँ बैठ कर फ़ख्र करे, सुनाओ भाई क्या है। आज हमने तो जीने को छोड़ दीजिए, मरने को भी फ़ख्र बना लिया, कौन किस कब्रिस्तान में दफन होगा, किसका मुर्दा किधर जाएगा, मियानी शाह में जाएगा या डिफेंस के कब्रिस्तान में जाएगा? हम तो इतने ही टूट गए कि हमने कब्रों पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आज हमारा कंपटीशन दुनिया में बन गया आखरत की तरफ जाने से पहले। हज़रत उमर और अबू बकर में भी कंपटीशन रहता था, लेकिन उनका कंपटीशन हमारे से बड़ा मुख्तलिफ था। आज हमारा बचपन तो खो ही गया है। आज के बच्चों का बचपन कहाँ आता है? हाथों में गैजेट देकर माँ ने उनकी आंखों पे बड़ी बड़े ग्लासेस लगवा दिए। ना वो लाड ना प्यार, ना वो खेल ना कूद। और लड़कपन तो लड़कियां लड़कों का एक दूसरे के बारे में सोचने में चला गया। कहाँ एम्बिशियस रहे हम, कहाँ गए वो बच्चे के जो कहते थे कि चचा अबू जहल कौन है, क्यों भाई तुम्हें क्या हुआ? नहीं, हमारी माँ ने हमें बताया है कि ये मक्का में हमारे नबी को गाली देता था। ये बच्चे किधर हैं आज? आज किधर हैं जो वो अपनी टोस पे खड़े होते थे? अल्लाह के नबी के दौर के वाकयात के बच्चे कहते हैं अल्लाह के नबी हम भी निकलेंगे दीन के लिए। कहा नहीं, तुम बहुत छोटे हो। कहा अच्छा ये देखिए, एड़ियों को ऊपर किया, टोस को नीचे दबा के कद लंबा कर कहा देखे अल्लाह के नबी मैं बड़ा हो गया हूँ। ये किधर के बच्चे आज आपके मेरे घरों में हैं? और वो चखी चीज़ और मैकडोनल्ड जाने के लिए नहीं तड़पते थे, वो अल्लाह के रस्तों में निकलने के लिए थे। दो बच्चे आते हैं अल्लाह के नबी आप जा रहे हैं हमें भी लेके जाएं। कहा नहीं तुम कमज़ोर हो। कहा अच्छा मुकाबला करा ले। दोनों का मुकाबला कराया, एक जीत गया दूसरा दब गया। कहा अच्छा चलो मैं जीत गया मुझे साथ लेकर जाएं। किधर के ये बच्चे और कहाँ गई हमारी जवानियाँ सिर्फ कर्जों के पीछे भागते हुए। जिस दिन लोन पास होता है उस दिन मिठाई का डब्बा आता है कि आपको तो 20 साल की उम्र में लोन मिल गया, अब आप घर लीजिए गाड़ी लीजिए फिर क्या होगा। किधर चली गई हमारी जवानियाँ, वो जवान बच्चियाँ जिनके ऊपर कभी किसी की नज़र ना पड़ी। आज सारी दुनिया उसको देखे, घर बैठे देख ले या वो खुद दिखा ले। और आज हमारे उधेड़पन सिर्फ खबरें सुनने और ड्रामे और वो भी देसी ड्रामे फिल्में जोक्स देखते हुए गुजर गई। तो बात तो बहुत कुछ है, कहने को तो इतना कुछ है कि दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हक बात कहलाए, मेरे दिल से कोई बात ना निकले। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के एक एक रुख को इस पारे में खोल के दे दिया कि हर उम्र को इबरत के साथ गुजारो। लेकिन हमारा मामला क्या है कि हम तो बदल गए, हम वो नहीं रहे जो हमें होना था। मैं आपसे चंद सवाल करती हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। क्या आपको दीन की तरतीब मालूम है? यानी दीन में जो चार बड़े फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? चार बड़े टुकड़े अगर कर लिए जाएं पूरी शरीयत और पूरे इस्लाम के समझने की खातिर, तो क्या मैं आप उसको जानते हैं? कुछ को तो आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने इस्लाम ए टू जी किया वो तो कह देंगे कि हाँ, पहली चीज़ अकीदा है, दूसरी चीज़ इबादत है, तीसरी चीज़ अखलाकियात है, फिर मामलात है। वो तो पास हो गए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। आम लोगों को नहीं पता होता क्या कहाँ आता है दीन में, कहाँ किसकी चीज़ कहाँ है, कितनों को पता ये बात? इल्ला माशाल्लाह। आपको पता था आप इसलिए कि आप क्लासेस में आते हैं, और अगर क्लासेस में ना आने के बावजूद भी किसी को पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी को किधर ले गए। अगला सवाल, कुरान हमसे क्या तकाजे करता है? अल्हम्दुलिल्लाह 26 पारे पढ़ लिए, आज अल्लाह की तौफीक और रहमत से 27वां पारा पढ़ रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, कोई राह चलता आपसे एक जुमला पूछे कि आपका रब आपसे क्या चाहता है, इस्लाम आपसे क्या चाहता है, कुरान आपसे क्या चाहता है, 3 सेकंड मुझे रुकना पड़ेगा, आप लिखिए और सोचिए क्या क्या लिखेंगे। वो लंबी लिस्ट 1,000 हुक्मों की जो सूरत बकरा में पड़ी, या फिर पूरे कुरान में से वो सारे अमल के नुक्ते निकालेंगे और अगला कहेगा ओहो इसीलिए मैं नहीं पढ़ता और मैं नहीं आती क्लासेज में, इतना कुछ चाहता है आपका इस्लाम आपसे। हालांकि आपका जवाब गलत है, आपने अपनी नासमझी से किसी एक को दीन से दूर कर दिया। तो आइए देखते हैं आज का पारा। अब अगले 4 और पारे यानी 28 से लेके 30 तक, इन सब के अंदर जो चीज़ें आने वाली हैं और जो पीछे 26 पारे थे उसका खुलासा है। और आज से बात शुरू करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह से मदद मांगते हुए तकमील वाले दिन ये कह सकेंगे कि मैंने दौरे कुरान पूरा किया। तो याद रखिए अल्लाह ताला के सिर्फ 3 तकाजे हैं आपसे मुझसे, ओनली 3। यहाँ रुक के ज़रा एक बात सुन लीजिए, बस दफ़ा हम कहते हैं इस्लाम में क्या हराम है क्या हलाल है, लंबी लिस्ट। जैसे एक मौके पे हमारे पास एक मस्जिद थी ह्यूस्टन में थे, तो एक नॉन मुस्लिम लड़की मस्जिद में आई, लेडीज सेक्शन में थी, तो पता चला ब्रदर साइड से कि इसको इस्लाम के बारे में जानना है, तो कुछ सिस्टर्स इसको कुछ बताएं। ज़रा हमारे लिए तो वो एक बहुत ही खूबसूरत मौका था ना, इतने में नमाज शुरू हो गई। तो खैर मैं भी वहीं थी, मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर यू कैन सिट हेयर आई विल टॉक टू यू। वो बेचारी बैठ गई। एक आध सिस्टर ऐसी भी थी जिनको शायद नमाज की छुट्टी थी या क्या था, खैर वो भी साथ बैठ गई। अब नमाज शुरू हो गई, वो हमारे साथ बैठी हुई है। और वो जो सिस्टर थी जो बिल्कुल न्यू कमर थी, वो उसको जिस तरह से इस्लाम बताने लगी, मेरे से नमाज पढ़नी धोबर। आज भी मैं सोचती हूँ तो मेरा, जिसका कहते हैं ना कि एकदम जहन परेशान होता है। नो नेल पॉलिश, नो पिग, नो फुला, क्यों इस्लाम इससे शुरू होता है? यानी मैं उसके जहन से उस वक्त बैठी सोच रही थी, क्योंकि नमाज में आवाज़ आ रही थी, साथ तो बैठी हुई थी, कि ये कबूल करेगी आपका इस्लाम? आप उसको इतना मुश्किल इस्लाम दिखा रहे हैं और वो बेचारी कैसे आपके दीन में आए? नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, नो नो नो, मुश्किल से नमाज पूरी की अल्लाह की रहमत से। और उसके बाद मैंने वो जो दूसरी सिस्टर थी उसको उर्दू भी आती थी, तो मैंने उसको कहा कि आप क्या कर रही हैं, आप इसको क्यों डरा रही हैं? आज हम तबलीग करते ही नहीं, अव्वल तो ये भी शुक्र कीजिए कि नहीं करते, क्योंकि अगर तबलीग करते भी हैं तो ऐसी भोंडी तकरीर करते हैं, ना फ़राइज़ और सुन्नतों का फ़र्क पता ना बताते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट क्या, पहले निकाह होता है फिर बच्चे होते हैं, ये तो सबको ही पता है ना। याद रखिए, अकीदे की खराबी के साथ आप किसी की नेल पॉलिश छुड़ा लीजिए, किसी की सिगरेट छुड़ा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हमारी भोंडी तबलीग इसलिए भी है कि हमें खुद नहीं पता पहले क्या करना है। डॉक्टर से तो पूछते हैं, अच्छा पहले कौन सी गोली खानी है, सुबह क्या खाना है, परहेज़ किस चीज़ का? अच्छा डॉक्टर साहब, दूध के साथ खाऊं कि पानी के साथ खाऊं? ठीक है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। दीन के बारे में आप और मैं कितना जानते हैं, और मैं दूसरों को तो कुछ ना कहूँ, वो तो भोले मासूम प्यारे लोग हैं, हम दीन सीखे हुए सिखाने वाले। और मैं पूरे शऊर से कहूँगी, अल्लाह मुझे यहाँ बैठकर कभी बदगुमानी ना करने अल्लाह बनाए, बहुत सारे दीन सिखाने वालों को इस्लाम की बेसिक्स क्या पहले क्या बाद में नहीं पता। आज तो 98% लोगों को फिक और अकीदे का फ़र्क नहीं पता। फिकी इख्तलाफात पे जो मस्जिदें और फिरके बने ना, तो उसके अंदर खुमे हुए कुछ लोगों के जुमले हैं, ना ना ना, इनका अकीदा नहीं हमसे मिलता। अच्छा सिस्टर क्या हुआ? कहती है नमाज में रफुल जदैन करती हैं। सिस्टर, रफुल जदैन करना अकीदे का इशू नहीं है, अकीदा तो जड़ है, वो तो बीज है। आपने ऊपर की एक डंडी को पकड़ कर पूरे दीन को बिगाड़ दिया। अच्छा फ़र्क होता है, ये फिक क्या होती है? पता नहीं, ना हदीस पढ़ी ना फिक पढ़ी। हदीस वाले हदीस नहीं पढ़े, और अहले हदीस कहते हैं खुद को, माजरत के साथ खुद से, और फिक पढ़े हुए खुद को हनफी कहने वालों को इमाम अबू हनीफा का पूरा नाम भी नहीं आता। उनको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके नाम नहीं आते, उनको उनके वो दो स्टूडेंट्स के नाम नहीं आते जिन्होंने असल में अबू हनीफा रहमतुल्लाह का नाम ऊँचा किया। ये मैं खुद भुगत चुकी हूँ, पिछले सालों में कहीं ना कहीं सुना भी चुकी हूँ, तो बात तो बहुत दुख वाली है, लेकिन ये सच है कि आज हम दीन से दूर और दीन हमसे दूर अजनबी हैं। क्या अजनबीयत होगी किसी की, किसी एलियन से, किसी वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले से, जो आज हमारी इस इस्लाम से अजनबीयत है? तो आइए ज़रा सा आपकी मदद करूं, और यकीन कीजिए वक्त नहीं है, लेकिन वक्त है, अब न किया तो कब, क्योंकि अलम या नीलिल्लज़ीना मनु अंतक्षा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। 2 घंटे बैठे रहें किसी के साथ, बल्कि आपने जितने घंटे लगाए हैं, अगर आप 26 × 2.5 को एक रैंडम करके देख लिए, इतने घंटे आप दारे कुरान से फ़ायदा उठा चुके, और आपको ये नहीं पता कि अल्लाह का और कुरान का आपसे तकाजा क्या है। वो क्या 3 तकाजे हैं कि जिनको अल्लाह आपसे मांगता है, तो फिर क्या किया आपने? मैंने 2 घंटे आप ग्रोसरी स्टोर में घूमते रहे, एंड पे आपकी बास्केट में क्या गया? आज सिर्फ दौरे कुरान बराए दौरे कुरान है, माजरत के साथ, तर्जुमा बराए तर्जुमा, अधूरी बधूरी, एक पारा तुम कर लेना एक मैं कर लूंगी, एक सफ़ा तुम पढ़ना एक मैं पढ़ाऊंगी। कुरान खानियों में क्या होता है आज? आखिर में तो बेचारी बहनें, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, सपारा खोलती हैं, एक सफ़ा, यानी राइट और लेफ्ट 2 पेज होते हैं ना, अच्छा ये सफ़ा मैं पढ़ती हूँ, दूसरा तुम पढ़ो, यानी हर एक दूसरे से काट के ही पढ़ेगा। क्यों भाई? वो समोसे ठंडे हो रहे हैं ना, पिज़्ज़ा आ चुका है, वो कह रही हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करें। क्या ये बातें आपने, मैंने कभी नहीं सुनी। सोचिए वल्ला ही, आज ये सोचना हमें कल के बहुत बड़े ऑपरेशन से बचाएगा, जिसका जिक्र सूरह हदीद में पढ़ेंगे। पुल सरात डिसेक्शन रूम है, वहाँ जाके मोमिन और मुनाफिक अलग हो जाएंगे, वहाँ जाके पता चलेगा कि कितने को इंटेलेक्चुअल थे और कितने को डिग्री होल्डर थे। चार चार डिग्रियाँ लगी हुई हैं आज नामों के साथ, डॉक्टरेट फुलां फुलां, 4 चीज़ें नहीं पता। तो मैं सिर्फ गो थ्रू करूँगी क्विकली, और अल्लाह ताला आपके भी और मेरे भी वक्त में बरकत दे। तो अभी से नियत कीजिए कि रमज़ान के बस बिलुल जन्ना कोर्स पहली प्रायोरिटी है मेरे लिए, अगर आज तक मैंने कुरान नहीं सीखा बाज़ाब्ता। वैसे तो हमें बहुत पता है, गूगल शेख तो हमारा उस्ताद है, व्हाट्सएप भी हमारा एक क्लासरूम है, लेकिन बात यह है कि सही नहीं सीखा, किसी के सामने झुक कर नहीं बैठे, आजी के साथ नहीं बैठे। और अगर आप पहले सुन चुके, माशाल्लाह बहुत सारे लोग, मैं खुद जानती हूँ, आप में 100 सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो कुरान के कोर्सेज कर चुकी, स्टूडेंट जितने हैं वो तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले ही पता होता है उनका मेयार, लेकिन वो लोग जो नहीं सीख चुके उनको फिर सीखना है, उसमें जाने की दुआ करें। तो आइए देखते हैं कि कुरान के हमसे तकाजे क्या हैं। पहला तकाजा है बंदगी रब, रब के बंदे बन जाओ, आप मैं खुद को अल्लाह का बंदा समझें और फिर अल्लाह को सबसे बड़ा समझें और फिर उसके हुक्मों पे अमल करें। यानी सिर्फ अगर बंदगी के तकाजे को देखें तो ये वही है जो या का नाबुदू व या का नस्तईन की सूरत में दिन में कई बार कहते हैं, और इस बारे में आप इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सूरत ज़ारियात जो शुरू में ही आ रही है, व मा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, आयत 56 है कि और हमने जिन्नो इंस को तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह आपसे मुझसे ये चाहता है कि मैं उसकी बंदी बन जाऊँ। इसके लिए फिर तीन काम है, अपनी हस्ती को पहचानिए, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत छोटी हूँ। सूरह फातिर में पढ़कर आया, या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़रा, अल्लाह मैं फ़कीर हूँ, मैं तेरे दर की मंगती हूँ। जब ये कैफियत आती है तो ये है या का नाबुदू, बंदगी तेरी। और बंदगी के वो तीन रंग जिसको हम में से अक्सर नहीं समझते, हम तो कहते हैं बंदगी और इबादत वो होती है जो नमाज रोज़ा हज ज़कात है, ये 1/3 ऑफ इबादत है, उसके बाद दूसरी चीज़ गुलामी भी है, सबमिशन भी है। यानी आपको वर्शिप भी करनी है उसकी, आपने अपने आप को सबमिट भी करना है, और आपने इस सब के बावजूद खुद को अल्लाह का स्लेव समझना है। जब आप कहते हैं या का नाबुदू तो आप कहते हैं अल्लाह ताला मैं बहुत छोटी, साथ ही आप कहते हैं मैं या का नस्तईन तो आप कहते हैं अल्लाह आप सबसे बड़े। यानी ये क्या है, अल्लाह अकबर और इन्नी असगर। हम अल्लाह अकबर दिन में 100 से ज़्यादा पढ़ते हैं सिर्फ नमाजों के बाद, बाकी तो पता नहीं कितना। वकब्बिर हो तकबीरा, लेकिन साथ ही दिल में आवाज़ आती है अल्लाह जी आप भी बड़े हैं, मैं भी बड़ी हूँ, आप भी बड़े, मेरा ख़ानदान भी बड़ा, मेरे बच्चे भी बड़े। यानी जहाँ अल्लाह के हुक्म के साथ किसी का हुक्म टकराने लगे वहीं पता लग जाएगा आप किस किस को बड़ा समझते हैं। फिरौन ने तो एक बार कहा था अना रब्बुकुमुल आला, आज हमारा नफ्स अंदर से पुकारता है अना रब्बुकुमुल आला, मैं भी तुम्हारा रब हूँ, मेरी भी मानो। ये क्या हर बात अल्लाह की मानो, ठीक है अल्लाह की मानो पर हर बात मानो, ठीक है नबी की मानो सब कुछ करो, लेकिन क्या हर बात सुन्नत सुन्नत हदीस क्या करते हो तुम? ये सोच, और फिर अल्लाह के दिए हुए हुक्मों पे अमल करना, समय नवात आना। इसको एक जुमले में लिख ले, रब को भी मानिए और रब की भी मानिए। जब ये तीन चीज़ें पूरी होती हैं ना, दिन में 5 बार झुकना है तो ये बंदगी है अल्लाह के हुक्म के ऊपर। आपने फजर जोहर असर मगरिब ईशा पढ़ी, और अगर आप इन सब के बाद दुआएं भी सिर्फ अल्लाह से करते हैं, कब्रों पर जाकर नहीं मांगते, इसमें सारा अकीदा आ गया शिर्क फित दुआ, तो मान लीजिए कि या का नस्तईन को समझ गए। और अगर फिर आपकी ज़िंदगी में मकदूर भर अकॉर्डिंग टू योर शाकिला, आपके सरकमस्टांसिस आपके हालात के मुताबिक अमल करते जाइए, आप अल्लाह की बंदगी में आएंगे। करें कैसे, ये बंदगी हासिल कैसे होगी? पहली बात है कि खुद इल्म सीखिए। जब तक बाकायदा इल्म नहीं सीखेंगे बंदगी का मफहूम नहीं आएगा। तो इस इल्म को सीखने की क्या खूबियाँ हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स, क्या हैं शराइत? आजजी, सब्र, इन नकलन तस्तती माई सब्रा, 16 पारे की पहली आयत आप मूसा और खिजर के किस्से में पढ़ चुके। सब्र के बगैर इल्म नहीं आता, आप तालिब इल्म नहीं बनते। फिर तलब है, बगैर तलब के तो खाना ना खाएं, तो बगैर तलब के इल्म कहाँ से आए? और फिर संजीदगी चाहिए। आज हम नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ दीन लेते हैं और इल्म लेते हैं, तलब थोड़ी बहुत होती है, सब्र तो है ही नहीं। हम तो कहते हैं बस चले चले, ये आते हैं, यदि मुझे क्लास याद आ जाती है मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जब क्लास में तफसीर के साथ सब्जेक्ट शुरू करवाए जाते हैं, हमेशा ही कराए जाते हैं, इंशाल्लाह आप सभी लोग जन्नत में आएंगे, आपको भी कराए जाएंगे, उसमें टिकेट्स ऑफ नॉलेज होते हैं, टू बी अ स्टूडेंट, क्या कुछ, तो एक बुक बड़ी प्यारी हम पढ़ते हैं उसमें इल्म के आदाब के बारे में। तो वो शुरू कराई तो वो जो आने वाले थे वो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग थे, माशरे के बिजी लोग थे, कहने लगे ये बुक नहीं हमें चाहिए, आगे चलें, इस वक्त में ज़्यादा तफसीर कराएं, हमें सबको पता है इल्म क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, और हालात क्या है आप, मैं क्या कहूँ। आप चाहे हाथों में ग्लासेस जूस के लेकर क्लास में आए, कोई आपको ना रोके, आपका हाल हुलिया इल्म की तलब वाला ही नहीं दिखता, कहाँ से आएगा इल्म आपके पास? तो याद रखिए, फिर आप एक सवाल कर लीजिए, कहाँ से सीखूँ, किस इदारे में जाऊँ, किस इंस्टीट्यूट में जाऊँ? मैं आपको सिर्फ वो मेथडोलॉजी दे देती हूँ जो अल्लाह के नबी के नाते से कुरान में, सूरत बकरा में, हज़रत इब्राहिम की दुआ में भी है कि रब्बना वजअलना, कि अल्लाह हमने घर तो बना दिया, अब तू यहाँ क्या कर, व बस फीहिम रसूलम मिनहुम, एक उस्ताद भेज जो खाना काबा को आबाद करे। और यही चीज़ सूरह आल इमरान में अल्लाह ने एक एहसान के तौर पे की कि अल्लाह ने एहसान किया तुम पर कि तुम में से एक रसूल भेजा। किसी भी ऐसे इदारे को चूज़ कर लीजिए जिसकी बात आपको समझ आती है, जो आपके क्लोजेस्ट हैं, कुरान और सुन्नत के अंदर रहते हुए। आप कहते हैं हमें तो क्या पता, हमने तो अभी सीखा ही नहीं कुरान सुन्नत क्या होता है और बिदत क्या होती है और शिर्क वाला मज़हब क्या, तो फिर अल्लाह से दुआ कीजिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सजदों में रो रो के दुआ करें, नमाजों में रोएं, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर ले जा, अल्लाह दीन के नाम पर ऐसे लोगों के पास ना ले जाना जो मेरा रहा सहा ईमान भी ख़राब करें। पहले तो भटका होता है बंदा ख्वाहिशों के नाम पे, क्योंकि उसको मनपसंद चीज़ें चाहिए। दीन पे आता है तो शिकूक के नाम पे भटक जाता है, और जो दीन आज 90% हमारे मुल्क में दिया जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उस पर मोहरे नबूवत नहीं है। तो क्या चीज़ हो उसमें चार चीज़ें लिख लें। यतलु अलैहिम आयातिही, व युअल्लिमुहुमुल किताब, व युज़क्कीहिम, और उनको सिखाए, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यतलु अलैहिम आयाती है तजवीद, हिफ्ज़, कुरान का अरबिक टेक्स्ट सिखाएं वो आपको। युअल्लिमुहुल किताब है आपको कुरान का तर्जुमा और उसकी तफसीर सिखाएं, उस पर तदब्बुर करवाएं, और सब कुरान सुन्नत के आईने से, किसी की फिक की रोशनी में नहीं, किसी दूसरे के अफकार नज़रियात नहीं, कि आपने सिर्फ यही किताब तफसीर की लेनी है, इससे बाहर हुए तो आप नहीं पढ़ सकते हमसे। जो लोग ये शर्त लगाते हैं ना कि कुरान भी आपने हमारा ही लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स को एक जैसा देने के लिए रेफ़र किया जाता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी गलत हैं जो आपके घरों में है। और इसके बाद फिर तीसरी चीज़ तज़किया। ये पहली दो चीज़ों पे आज वल्ला ही 8-8 साल के कोर्सेज़ हैं अल्लाह की रहमत से, और साथ चौथी भी मिला ले, हिकमा, हदीस, हिकमतें, लाइफ मैनेजमेंट, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, स्किल्स, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वाइफ, जो आपको ज़िंदगी की हिकमतें सिखाएं, और साथ साथ तज़किया करें, उस इदारे को, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ये चार चीज़ें बताने वाला लुकनत के साथ पढ़ा दे, मोटी भद्दी आवाज़ में पढ़ा दे, सीख लीजिए, लेकिन उन मीठी मीठी चीज़ों और उस नरम वाले दीन से ये बेहतर होगा कि जो आपको बेअमल बना दे। हमारे पास इस कोर्स का या इस लेवल पे पहुंचने का नाम है सबीलुल जन्ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिया जा रहा है। ये बेसिक कोर्स होता है जिसमें आपको अपनी फिक्र लगती है, ऊपर चल के देखिए तो बंदगी रब आ जाती है, आपकी नमाज़ें ठीक होने लगती हैं, आपकी तहारत के मसाइल ठीक होते हैं, आपको कम अज़ कम ये तो पता चलता है कि आपसे रब चाहता क्या। ये है पहला तकाजा। अगले पे चलते हैं, दूसरा तकाजा, जब आप खुद अल्लाह के बन रहे हैं, और याद रखिए एक दिन में नहीं होता, चल पड़े पहुँच जाएंगे, कोई 50 मील दूर है, कोई 20 मील दूर है, कोई 100 मील दूर है, लेकिन रास्ता तो है ना, एक सीधे रास्ते पे तो लगिए, आप तो अभी चले ही नहीं, आपके तो अभी वक्त नहीं हुआ, आपने मास्टर्स कर लिया, आप डॉक्टर्स बनने के करीब हैं, आप सीए कर रहे हैं, आपको भी इतना वक्त नहीं मिला। और ये कोर्स अमूमन हमारा 360+ लेसन्स का होता है, आप हर रोज़ आ जाइए, यानी अगर आप हर रोज़ आके पढ़ते हैं ना विदाउट एनी छुट्टी, तो 1 साल से भी कम अरसे में आपको ये मिल जाता है। सहूलत की खातिर आपको डिफरेंट तरह से प्लान किया जाता है। अगला तकाजा शहादत अलन्नास, इसको बाद में दिखाऊंगी, हर पारे के साथ आगे चलेंगे। और फिर तीसरा तकाजा है दीन का निफास, कितने ही लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है, तो ये जो आपको शायद एक तावीज़ लग रहा होगा, हम इसको हर दिन के अगले पारों में देखेंगे। आज मैंने अपने अल्लाह के बंदे बनने और अपने आप को अल्लाह का बनाने के लिए सुनना है, पारे की मरकज़ी आयतें तो सारी ही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या रखूँ क्या ना रखूँ, लेकिन कोशिशों में तेज़ी के लिए, अधूरी कोशिशों को पूरा करने के लिए आपके सामने जो थीम आयात हैं वो सूरत वाक़िया। वकुन तुम अज़्वाजन सलासा फ़असहाबुल मैमनति मा असहाबुल मैमना वसहाबुल मशमति मा असहाबुल मशमा वसाबिकून असाबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम। सूरत वाक़िया की आयत नंबर 7 से 12। और तुम लोग उस वक्त 3 गिरोहों में तकसीम हो जाओगे, दाएं बाजू वाले सो दाएं बाजू वालों की खुश नसीबी का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या कहना, और आगे वाले तो फिर आगे ही वाले हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं, नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। तो आज हमारा मसला क्या है लिखिए, हम सिर्फ असहाबुल मैमना में शामिल होना चाहते हैं, चलो कुछ तो कर लो, यानी दुनिया में एम्बिशियस और आखिरत के लिए कंटेंट, इट्स ओके, थोड़ा ही सही, कुछ तो चलो कुछ हमारा भी बन जाए, कुछ हमारी आखिरत बन जाए। और साबिकून साबिकून बनने वालों पे हमें रहम आ रहा होता है, हाय बेचारे, हाय सारा दिन एक ही काम, हाय 5 नमाजें मस्जिद में जाएगा तो कमाएगा क्या, जॉब कौन दो ऐसे बंदे को जिसने 5 नमाजें मस्जिद से पढ़नी, कौन बुलाए अपनी दावतों में खानों में जिसने कहना है पहले मगरिब चलो मेरे साथ पढ़ने मस्जिद में। तो वो साबिकून साबिकून तो आज एक्सटेंड होते दिखते हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये हैं फतूबा लिल गुरबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें हैं। और आज जो दुआएं मांगते हुए इस बारे को लेके चलेंगे, वो सूरत तहरीम में दुआ आती है, रब्बना तमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए हमारे रब, हमारा नूर हमारे लिए मुकम्मल कर दे, और हमारी बख्शिश फरमा, बेशक तो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला, ये कौन सा नूर है? ये दुनिया में कुरान का नूर है, हिदायत का नूर है, इल्म के बाद अमल का नूर है, ये नूरों नला नूर है। और कल पुल सरात पे ये दुआ होगी लबों पे, अल्लाह करे हमारे वक्त में बरकत, हम पारे कैंट तक पहुंच गए और हम देखेंगे कि वहाँ क्या अंधेरों में टाबक टोइयाँ मारे होंगे वो लोग जिन्होंने अधूरा दीन लिया, जिन्होंने दीन के नाम पे बस अपने बारे में यही सोच लिया कि और सोच लो, और इंतज़ार कर लो, अभी और, अभी और, इट्स टू अर्ली, अभी नहीं। यानी दुनिया लेने के लिए तो 3 साल के बच्चे को ले जाकर डे केयर में डालते हैं ताकि ज़रा माँ को वक्त मिल जाए, और जब बात होती है दीन की तो कहते अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, ज़रा ये वो, यानी डिली डेली का शिकार है। अल्लाह ताला हमें ऐसी सारी कमियों बेशियों से दूर कर दे। हदीस जो आज के साथ आपके लिए शेयर की गई है वो सही मुस्लिम की है, अबू हुरैरा ही रावी हैं, और इस हदीस को हिर्ज़े जान बने कि दीन कैसे अजनबियत की तरफ लौट रहा है, आज वाकई अपनों में अजनबी हो गए। आंसू पोंछ के नहीं आते शादियों से, जब लोग आपको घूर घूर के देख रहे थे और जब लोगों ने आपको एक कोने में खुड्डे में डाल दिया था, चले आप इधर बैठ जाइए, हम आप इधर ही खाना दे देंगे, रो के नहीं आते आप वहाँ से कि हमने क्या जुर्म किया है? और अगर सबके बीच में निकाब में बैठ ही गए और मर्द बेचारे नजरें झुका के बैठे हैं कि इतनी औरतें बहू बेटियां फिर रही हैं, हम किस शर्म के साथ बैठे हैं इस हॉल में, तो क्या वो अजनबी नहीं बनते? वो नून में नुकते नहीं? लिख लीजिए नून में नुकतों का दीन है आज। आज के पारे में ये है कि जो आज दीन पे अमल करता है वो नून का नुकता, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हाँ, उनके साथ दुआएं कराएंगे, उनसे बातें करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आज दीन के साथ क्या मेयार है? आज एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, आपके साथ शेयर करती हूँ। किसी जगह पे एक साहिबे दीन थे, मस्जिद के इमाम भी थे, बड़े मारूफ थे, तो जब रमज़ान आता तो लोग उनकी इफ्तारियाँ करवाते कि चलो कुछ बरकत होगी, आएंगे, दुआएं करेंगे, जो भी उनके मोटिव्स हैं हम नहीं छेड़ते उसको, कि लोग नेक लोगों को खाना किस सोच के साथ खिलाते हैं। खैर, सारे मोहल्ले में उनकी इफ्तारियाँ थी, एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने भी बुला लिया, खूब इज्जत की, खूब खातर की, उन्होंने उनको खिलाया पिलाया और बड़ी इज्जत से रुख्सत कर दिया। जब मेहमान चले गए तो बीवी खाना समेट रही थी, एकदम उसको ख्याल आया कि इस कमरे में तो कुछ पैसे रखे हुए थे, वो किधर है? ढूंढती रही, घूमती रही, नहीं मिला। मियाँ से पूछा, आपने लिए? नहीं लिए, बच्चा तो सो रहा है घर में, छोटा है, वो तो लेगा भी नहीं। अब मियाँ बीवी के दिल में शक, और तो कोई आया नहीं, आए तो इमाम साहब ही थे। खैर, किस्सा मुख्तसर, दिल में गांठ पड़ गई, किससे कहें क्या कहें, चुप कर जाओ, कहा बस खामोश रहो, इज्जत बहुत है इनकी, कोई बात नहीं, जरूरत होगी ले गए हमसे। पूरा साल गुजर गया, ये उस इमाम साहब या उस दीनदार से खींचे खींचे रहे, ये भी लिख लीजिए, ये भी शैतान के शोशे होते हैं, हमें कुछ दीनदारों से खींच खींच के रखता है, कहते हैं टीचर बदलने तो हम आ जाएंगे, तो आप अपने पास कहीं और चले जाइए, बहुत सारे टीचर हैं शहर में, और इदारा बदलने तो हम आ जाएंगे, ये नाम बदलने तो हम आएंगे। कितने लोग हैं जो नाम देख कर आते हैं और कितने जो सिर्फ नाम देख कर चले भी जाते हैं, छोड़ो छोड़ो इनको ना सुनिए और इनको ना पढ़िए और इनको ना सुनिए। खैर, एक साल गुजर गया, ये उस मस्जिद से खिंचे खिंचे रहे, नहीं आने लगे, अगला साल आ गया, फिर देखा मोहल्ले में एक रस्मन रिवाजन, वही रिवाज था कि शहर में लोगों में यही थे करीब, लोगों ने इनकी इफ्तारियाँ शुरू कर दी, मियाँ बीवी में डिस्कशन शुरू होता है कि क्या करें। बीवी ने कहा सुनिए ना, कोई बात नहीं, बरकत के लिए जो बुलाना है तो बुला लेते हैं, फिर हमारा क्या, कुछ नहीं होता, बुला लीजिए। खैर, मियाँ ने जाके इमाम साहब को इन्वाइट कर दिया कि आप आइए खाने पर, बड़ी इज्जत से खिलाया पिलाया, महज़ब अंदाज से, दिल में जब बात होती है ना तो वो गर्म जोशी नहीं होती, ये तो आप मियाँ बीवी में भी जानते होंगे, सगे भाई बहनों में भी दिल खिंचे हों तो निगाहें नहीं मिलती, सलाम करते हैं आप नज़रें नहीं ऊपर करते एक दूसरे से। खैर, इमाम साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ कि पूरा साल आप मुझसे ज़रा दूर दूर रहे हैं, खैर आज बड़ी खुशी हुई आपको मिलकर। तो उस ब्रदर ने फिर वो कहानी सुना दी कि बात ये है कि पिछले साल ये वाक़या हो गया, उसके बाद हमारे दिल में मलाल आ गया, तो आप बताइए क्या आपने पिछले साल हमारे घर आए थे तो पैसे लिए थे? अब इमाम साहब की बात सुनिए, उन्होंने कहा मैंने वहाँ से उठाए थे। क्या आपने वहाँ पैसे रखे हुए थे, वहाँ फलां अंगीठी पे उठाए थे? कहा मैंने उठाए थे, क्योंकि मैं देख रहा था कि पंखा चल रहा है और वो नोट फड़फड़ा रहे हैं, अब वो नोट फड़फड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुम जाएंगे, उड़ जाएंगे, आपको तो नहीं मिलेंगे, तो मैंने वो नोट वहाँ से उठाए। अब सोचा कि मैं इसको कहाँ दूँ, क्या करूँ, अभी इन्हीं सोचों में था तो मैंने उसको पास रखे हुए कुरान पाक में रख दिया। ये सोचा कि अगर आप आएंगे अभी तो मैं बता भी दूंगा और आप सुबह जब नमाज के बाद कुरान पढ़ेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन आप आए और मिलने जुलने में ऐसा वक्त गुजरा कि मैं जिक्र करना भूल गया। तो क्या आपने पिछले साल से अब तक कुरान नहीं खोला? ये है बदल इस्लाम गरीबन, अब वो मेज़बान का सर झुका था, आगे जो वो आप समझ गए, कुरान भी रखा था वहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से ऊंची जगह पे, का लेके आइए। जो ही कुरान खोला अभी बाहर से वो कहते हैं वो नोट नजर आने शुरू हो गए। तो जब दीन के साथ ये ताल्लुक हो, चंद दीनदारों से सलाम दुआ रख लें, मसले पूछने पड़े तो पूछ लेंगे, जोर डालना पड़ा अपनी मोहब्बतों का तो डाल के जरा रिलैक्सेशन ले लेंगे, और दुआ करानी पड़ी तो इनको बुला लेंगे, कोई मर गया तो फतेह खानी करा लेंगे, किसी का निकाह करना पड़ा तो इससे निकाह पढ़ाएंगे। तो ये है आज के पारे का फितना, अजनबी दीन। अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाए, और मौलवी साहब के बगैर ना आपका निकाह होता है ना आपका जनाजा होता है। दीन के साथ इस तरह का ताल्लुक सहाबा का तो नहीं था। पिछला पारा आपने देख लिया, इस बात की गवाही थी कल सारा दिन सहाबा कराम और हम। जो फीडबैक कल के पारे का मिला शायद पिछले पूरे दौरे कुरान का न मिला हो। सच है ये, सच आज कोई बोलता नहीं है। सहाबा किराम मिट्टी के नहीं थे, पत्थर के नहीं थे, वाकई वो पुरसरार बंदे थे, क्योंकि जौके खुदाई आ गया था। दो नीम इन की ठोकर से सहराओ दरिया, आज आपके साथ भी ये हो सकता है। आप पूरे दिन को ले लीजिए, अजनबी बन जाइए, बी स्ट्रेंजर, नो प्रॉब्लम। लोगों ने क्या देना है? सर में दर्द शुरू हो जाए कोई आपका इलाज नहीं कर सकता, जब तक अल्लाह ना चाहे। दवा भी तभी काम करती है जब अल्लाह चाहता है। तो आज आपने, मैंने इस सोच के साथ इस बारे को सुनना है कि अल्लाह दीन से अजनबियत दूर करते। इस बारे के हाईलाइट्स देख लीजिए। आप कहेंगे रोज़ एक ही जैसे होते हैं, लेकिन शायद किसी दिन आपके दिल में आ जाए कि अल्लाह के दर्दनाक अजाब से डरना क्या होता है। ये रिमाइंडर्स हैं, पूरे कुरान में बार बार ये चीज़ें आती हैं, और रोज़ इसलिए शेयर की जाती हैं कि शायद आपके दिल पे लग जाए कि अंदाज़े बयां गरचे शोख नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो कुरान आपको मुझे बार बार कहता है अल्लाह के दर्दनाक अजाबों से डरो, अल्लाह की इबादत करना सीखना, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं बनाना, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी। और वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, सूरत नजम में पढ़ेंगे हम, तो इब्राहिम की तरह वफाओं का हक अदा करना सीखना है। कुरान पाक से नसीहत हासिल करनी है, नसीहत कबूल भी करनी है, ले लेते हैं कबूल कोई नहीं करते इल्ला माशाल्लाह, और अल्लाह से डर कर रहना सीखना है, और अल्लाह की नेमतों का शऊर हासिल करना है, जन्नत के बारे में भी जानना है, और असहाबुल यमीन और असाबिकून असाबिकून का फ़र्क भी जानना है, और इस कुरान में इसकी आयतों पे गौर व फिक्र करना भी सीखना है, और ख़ास तौर पे तस्बीह करना। आज यहाँ से सब्बहा और युसब्बिहु से शुरू होने वाली मुसब्बिहात की पहली सूरत सूरह हदीद शुरू हो रही है। तो इंशाल्लाह हमने तस्बीह की अहमियत और उसकी फ़ज़ाइल भी देखने हैं, और फिर सूरह हदीद में जाकर देखेंगे अल्लाह की राह में खर्च करना क्या होता है। वो तो फौरन लब्बाई कहते थे, हम सोच में पड़ जाते हैं, हमें ऐसे लगता है हमने सुना ही कुछ नहीं। अबू दहदा तो मंजल्लज़ी युक्रिदुल्लाहु कर्दन हसना सुनकर उठ पड़े, 600 दरख्त खजूरों के जिस बाग में थे वो अल्लाह के नबी को पकड़ाई चाबियां, और हम तो उस वक्त सोचों में पड़े होते हैं। अच्छा वाकई देखते हैं सुनते हैं, तो देखेंगे कि ऐसा ईमान कौन सा होता है, ये कहाँ से मिलता है। और फिर अल्लाह को कर्ज़ हसना देने के तरीके, अल्लाह की रज़ा की तलब में खपना, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह बड़े फजल वाला है। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 31 से ये पारा शुरू होता है, जो 51 नंबर की सूरत है, और उसमें टोटल 60 आयात हैं। पहली इब्तदाई आयात में आज अपने रिदम देखना, आपके और तर्जमे के बीच में बहुत कम चीज़ें शेयर करेंगे ताकि हम आखिर में इस पारे का हक अदा कर सकें। आइए शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين। पीछे से वाक़या चल रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और उसी का जिक्र है इधर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के भेजे हुए यानी फरिश्तों, तुम्हारा क्या मकसद है, तुम्हारी मुहिम क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि हम गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि हम इन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं, इशारा है कौम लूत की तरफ, जो तेरे रब की तरफ से निशान जदा है, और इन हद से गुजर जाने वालों के लिए। जब कौमें इतनी हद से गुजर जाएं कि औरत मर्द का ताल्लुक सिर्फ मर्द मर्द के ताल्लुक में ढल जाए, तो ये भी याद रखिए कि अल्लाह ताला की पकड़ को बुलाने वाली बातें। आज पूरी इंसानियत एक पकड़ का शिकार दिखती है, अब तो लोग थक गए, परेशान हो गए, क्या करें कैसे करें। तो उसका जवाब है इसमें कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो अल्लाह ताला लोगों के जहन मार देता है। आज देखिए ये अजनबियत नहीं है, और मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, अल्लाह मुझे माफ़ रखे, लेकिन एक वक्त आएगा निकाह करना भी एक्सट्रीमिज्म लगेगा। आपके बच्चे निकाह कर देंगे, आपके अम्मी अबू मजबूर कर रहे हैं कि निकाह करो, और उससे भी बुरा वक्त ना आ जाए कि जब दोस्त दोस्तों में के कितनी रिजिड हैं आपकी मॉम, जो कहती हैं आपको लड़की से ही शादी करनी है, लड़के से क्यों नहीं करनी, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विद यू, ये वक्त आने वाला है। याद रखिए, जिन कापियों को नहीं खोलते ना वो गर्द आलूद हो जाती हैं। घर के वो बर्तन जो इस्तेमाल ना हो ना, वो फिर मिट्टी और फफूंदी का शिकार हो जाती हैं। जब हमने दीन छोड़ दिया, जब हमने इबलाग छोड़ दिया, शहादत अल्नास छोड़ दी, निफास का तो मामला ही बड़ा आखिर में आना था। फिर उन्होंने होमोसेक्सुअल नहीं बनना तो क्या बनना है, लेस्बियनिज्म नहीं होनी तो क्या होनी है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इधर दावत देते हैं इस बात की कि तुम ज़रा सा थोड़ा सा सोचो, मुसलमानों तुमसे क्या गलती हो गई, क्या हो गया तुमको। तुम जो इस दुनिया पे चांद और सूरज सितारे बन के चमकते थे, आज लोग तुम्हारे इतने नाम क्यों बनाते हैं? आज तुम्हारा दीन लोगों को इतना अजनबी क्यों लगा? क्योंकि तुम्हें अजनबी लगता है। और फिर क्या हुआ, बस जितने ईमानदार वहां थे हमने इनको निकाल लिया। याद रखिए, आज अगर आप कुरान से जुड़े हुए हैं ना, तो आपकी आने वाली नस्लों को कोई खतरा नहीं है। वो उस दौर के वही लोग होंगे जिनको अल्लाह बचाएगा। शर्त है कि आज से उनको भी और खुद को सच्चा और प्योर दीन दीजिए, इल्म दीजिए। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि जो सूरह ज़ारियात है ना, कुरान पाक में कुछ एक टोन की सूरतें, मसल ज़ारियात, मुरसलात, आदियात, सवाफात, नाजियात, एक टोन है, एक रिदमिक सूरतें हैं। और इन सब का टॉपिक आखरत है, फैलाने वालियाँ। कैसे अल्लाह ताला ने पिछले पारे में जो इस सूरत का हमने हिस्सा पढ़ा, उसमें पैगाम दे दिया कि तुम ज़रा सा इस कायनात में अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चल के तो देखो। अपना एक पैकेज दिया अल्लाह ताला ने कि कैसे मोमिन के रोज़ और शब होते हैं, किस तरह से वो कानु कलीला मिन अल्लैली मा यहजउन व बिल असहारि हुम यस्तगफिरून व फी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइली वल महरूम। इतने खूबसूरत इंसानों की ज़िंदगी में जब ये किताब आ जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अल्लाह ताला यहाँ आपको मुझे दावत देते हैं कि हम नियत करें, इरादा करें। कायनात की एक एक चीज़ मसरूफ़ है, ज़ारियात भाग रही है, मसरूफियत मसरूफियत। कायनात एक्टिव है, तुम क्यों डीएक्टिव हो? कायनात चुस्त है, तुम क्यों सुस्त हो? कायनात हर वक्त किसी काम में मसरूफ है, तुम भी दूसरों को फ़ायदा दो, वो फ़ायदा दे रही है, तुम क्यों नहीं देते? तो क्या पता चला कि जब मुसलमान वाकई हवाओं की तरह फिरते थे और साए हून और साए हाथ थे, तो दुनिया में होमोसेक्सुअलिटी नहीं थी। ये गंदगियां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी क्योंकि काम नहीं कर रहे। देखिए, सफाई वाले एक हफ्ता स्ट्राइक कर दें तो शहर का क्या हाल हो? वो मुल्क जहां हम अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से रहते हैं, वहां की भी सड़कें खराब हो जाएं। आज उम्मत मुस्लिमा ने काम छोड़ा हुआ है क्योंकि और काम बढ़े हैं ना, ज़ाती ज़िंदगी के तकाजे इतने बढ़ गए कि कौन इन चीज़ों को लेकर चले। आज से नियत कीजिए कि मैंने काम करना है। नस्लों को साथ लेकर चलिए, देखिए आपका घर कितनी जल्दी साफ होता है, फिर गली, फिर मोहल्ला, फिर अपने अपने इलाके में कोशिशें कीजिए, इन गंदगियों से निकालिए। लिख कर बात करें, लॉजिक में बात करें, हुकूमतों तक बात पहुंचाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे होमोसेक्सुअल ना हो जाएं। और फिर इसके बाद तो बात इस तक नहीं रहनी, बात तो इससे आगे भी है। लेकिन इसके लिए यकीन मुहकम, अमल पे अहम, मोहब्बत फातह आलम, इस मिसरे पे अमल करना पड़ेगा। यकीन से उठिए, मुस्तकिल अमल कीजिए, मोहब्बत कीजिए लोगों से, दिल जीत लेंगे आप। जुबान शीरी, मुल्क गिरी, जो दीन के कामों में लगा रहता है, रात दिन अल्लाह को राजी करता है, अल्लाह ताला फिर उसकी नस्लों को इन गंदगियों में नहीं पड़ने देते। नींद की कुर्बानी दीजिए, सुस्तियों को छोड़िए, अपनी रूटीन ठीक कीजिए, अपने बच्चों को साथ लेकर निकलिए, फिर देखिए आपके मेरे साथ क्या मामला होता है। और हमने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ एक ही घर पाया, और वो लूत अलैहिस्सलाम का घर था। आज भी बाकी ऐसी अजनबियत होती दिखती है। और हमने इनके लिए जो दर्दनाक अज़ाब का डर रखते हैं, एक कामिल अलामत छोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमारी तरफ से तंबीह है कि हमने उन्हें फिरौन की तरफ खुली दलील देकर भेजा। शायद ही कोई पारा हो जिसमें हजरत मूसा का जिक्र ना हो। तो देखिए, लफ्ज़ मूसा जो है ना, बाज़ लोग कहते हैं ये पानी से निकला हुआ है, हालांकि ये मिस्री नाम है, न्यू बॉर्न को कहते हैं। फिरौन ने ये नाम रखा था मूसा का, क्योंकि वो हीब्रो लैंग्वेज का नाम तो नहीं रख सकता था क्योंकि वो उस वक़्त की ग़ुलाम कौम थी। बस इसने अपने बलबूते पर मुंह मोड़ा और कहने लगा, ये जादूगर है या दीवाना। बिलाखिर हमने इसे और इसके लश्करों को अपने अजाब में पकड़कर दरिया में डाल दिया। वो था ही मलामत के काबिल। इस तरह आदियों में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने इन पर खैर व बरकत से खाली आंधी भेजी। एल्बम के सफ़े पलट रहे हैं पीछे की तरफ से कि जिन कौमों ने नबियों की बात को झुठलाया, अल्लाह ने उनके साथ क्या किया। उम्मत मुस्लिमा के लोगों, तुम भी अपनी फिक्र करो। वो जिस चीज़ पर गिरती थी उसे बुसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब इनसे कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक फ़ायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की, यानी सरकशी की, ट्रांसग्रेशन। जिस परी ने इनके देखते ही देखते तुंदो तेज कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस ना तो वो खड़े हो सके ना बदला ले सके। आज भी इंसानियत स्टिल स्टॉप है। स्टॉप, खड़े हो जाओ, कोई हिल नहीं पा रहा, अभी तक भी नहीं हिल पा रहे। कल किसी ने मुस्लिम मुल्क की एक एयरलाइन की पिक्चर्स भेजी कि ये पहली फ्लाइट चली है जब से ये सारे लॉकडाउन चल रहे हैं, और वो तस्वीरें देखकर मैं हैरान रह गई। निकाब किए हुए एयर होस्टेस ने पायलट मर्द बैठे हुए लोगों को अलग किया जा रहा है, औरत मर्द साथ नहीं बैठे हुए, बीच में गैप्स हैं, तो इट्स पॉसिबल। और सब अजीब लग रहे थे, प्लास्टिक के पूरे पूरे कपड़े लिफाफे चढ़ाए हुए अपने ऊपर एयर होस्टेस ने, तो क्या ये सिर्फ कोरोना के डर से है? अल्लाह के डर से नहीं हो सकता, अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम कभी इससे पहले यही हाल हो चुका था, वो भी बड़े नाफरमान थे। ये कोई आज का गम नहीं है दीन को छोड़ना, ये तो हजरत नूह के दौर से चलता है, और हर दौर में लोगों ने दीन इस्लाम की तरह अपने अपने अदियान को पामाल कर दिया। आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया, और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। और अल्लाह के हाथों से बनी हुई आसमान की छत को देखिए, आज भी एवर न्यू। और जमीन को हमने फर्श बना दिया, पस हम हैं ही बहुत अच्छे बिछाने वाले। और हर चीज को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया, ताकि नसीहत हासिल करो, करो क्या फफिरू इलल्लाह, बस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ भाग करो, यानी रजू इलल्लाह करो। ला मकसूद इलल्लाह, ला मतलूब इलल्लाह, यकीनन मैं तुम्हें इसकी तरफ से साफ साफ तंबीह करने वाला हूँ। तो क्या सिखाया, खलकना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून, कायनात की हर चीज़ जोड़ा है, इसी तरह ज़िंदगी का जोड़ा मौत, हयात बादल ममात, जन्नत का जोड़ा जहन्नम, दुनिया का जोड़ा आखरत, सिर्फ एक ज़ात है कुल हो अल्लाह अहद, उसका कोई जोड़ा नहीं है। साइंस ने ये बात बताई तो हम मरऊब हो गए, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले बता दी तो हमने कभी गौर भी ना किया इन चीज़ों पर। हमसे क्या मतलूब है, नसीहत लीजिए। लअल्लकुम तज़क्करून, फितनों से अपने आप को बचाना है, दुनिया में रहते हुए आखरत और जहन्नम का यकीन रखना है, और जन्नत को पाने की पूरी कोशिश। फ़फ़िरू इलल्लाह, फरार का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं, इसी से ये लफ्ज़ है भागना। आइए ज़रा ख़ुद से पूछते हैं, हमारी दौड़ किस तरफ है? क्या हम फ़फ़िरू इलल्लाह है, इला तरफ होता है और अन अपोजिट होता है, कि हमारा रवैया फ़फ़िरू अनिल्ला तो नहीं हो गया? अल्लाह से दूर भागो, जरा कोई दीन आला मिल जाए इस्लाम ले लो, भागो भागो। अभी देखना, इन्होंने क्लास की बात करनी, इन्होंने दर्स की बात करनी, इन्होंने पूछना किधर, शादियों में मिलते हैं, सामना होना है, बस सलाम करके भागने, अभी मैं मसरूफ हूँ, बाद में आती हूँ। क्यों कि पास बैठे तो पूछेंगे, सुनाइए आजकल क्या हो रहा है। तो आज हम अल्लाह से कैसे भागे, हम अल्लाह वालों से और अल्लाह की तरफ बुलाने वालों से भागे। इनका फ़ोन ना उठाइए, मेरे साथ तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई तजुर्बा नहीं, दोस्तें दोस्तों की बातें बताती हैं, और एक दूसरा अपने आप के रिश्तेदारों के बारे में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते। इनविटेशन भेजा, दावतनामा भेजा, पहले तो फ़ौरन खुश होते हैं, अच्छा पार्टी हो रही है, दावत हो रही है, तर्स का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो याद रखिए, आखरत के लिए पूरी कोशिश करनी है, और नतीजा फिर आला दर्जे की जन्नत और कामयाबी की सूरत में होगा। और आखरत के लिए अधूरी कोशिशें करने वाले वहाँ हसरत और परेशानियों का शिकार हो जाएंगे। जैसे भी हालात हैं भागो, खुशी के वक्त पे भागो अल्लाह की तरफ, गम के साथ भागो, उम्मीद से भागो, सब्र से भागो। मुसलमान की सारी दौड़ धूप अल्लाह के रास्तों में होगी, फिर बात समझ आती है बंदे को। सही मुस्लिम की रिवायत है 7089, अल्लाह ताला किसी मोमिन पर एक नेकी के लिए भी जुल्म न करेगा, इसका बदला दुनिया में देगा और आखरत में भी देगा, और काफिर को इसकी नेकियों का बदला दुनिया में दिया जाता है, यहाँ तक कि जब आखरत होगी तो इसके पास कोई नेकी न रहेगी जिसका वो बदला दिया जाए। यानी मोमिन के लिए अल्लाह आखरत बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, और गैर मोमिन को दुनिया में दे दिला के फारिग करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी फकीर को 2-4 पैसे दे के फारिग कर देते हैं, चलो जाओ जान छोड़ो, लेकिन जिसको अपने अपने साथ रखना होता है उसको आप जॉब देते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। आज हमने क्या किया इसके बारे में सोचिए, और अल्लाह के साथ किसी और को मबूत न ठहराओ। बेशक मैं तुम्हें इसकी तरफ से खुला डराने वाला हूँ, इस तरह जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं, इनके पास जो भी रसूल आया तो इन्होंने कह दिया या तो ये जादूगर है या दीवाना। ये कैसे होता है भला, जरा सोचिए। अजनबियत के फितने को सामने रखिए, क्या आज भी लोग अल्लाह के नबियों के साथ यही रवैया रखेंगे अगर वो आ गए? कितना अल्लाह के नबी से मोहब्बत की बातें, कितने दावे, जरा इस आयत पे सोचिए तो सही। अगर आज अल्लाह के नबी दुनिया में आ जाएं, आएंगे नहीं, हमारा ईमान है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन बिल फर्ज़ मुहाल इफ प्रॉफिट विजिट्स यू, क्या करेंगे? दरवाज़ा खोलेंगे या पहले घर में कुछ चीज़ों को छुपाएंगे, कपड़े बदलेंगे, खिलौने छुपाएंगे, गंदी गंदी चीज़ें हटाएंगे, कार्टून बंद करेंगे, कहाँ बिठाऊँ, किस हुलिये में बिठाऊँ, क्या मेरा घर इस काबिल भी है कि अल्लाह का नबी आ सके। याद रखिए, माजी के रसूल के साथ ताल्लुक़ नस्बत का, और ख़ास तौर पर नातों और गज़लों का और कवालियों का और राग रंग का रखना बड़ा आसान है। वक्त के नबी छोड़ दीजिए, नेक बंदे के साथ गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। मुत्तकीन के साथ रहना कोई आसान काम नहीं होता। कदम कदम पे ब्रेक लगवाएंगे आपसे मस्जिद में रुकने के लिए। तो आज हमारे लिए दीन कैसे अजनबी हुआ, एक मिसाल लीजिए। अब देखिए कि एक घर है, हम सब के घर जिस तरह के जहन में ले आइए, जो अपने होते हैं, जो क्लोज सर्कट लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, हम उनको पूरे घर में घुमाते फिराते, आइए जी घर के दरवाजे खुले हैं, वो आपकी अलमारियां भी खोल के देख जाए तो उनको हक है क्योंकि वो आपके रिश्तेदार है और बेतकल्लुफ है। इसके बरक्स को अजनबी आ जाए, बड़े इज्जत वाला, बहुत मुदब्बर, घर के बाहर ही जो मेन डोर के साथ ही डोर है वहां बिठाते हैं, ड्राइंग रूम में, चाय जाएगी, ट्रे में जाएंगी, खिलाएंगे पिलाएंगे, और हो सकता है कि अगर रात भी रहनी हो तो उधर ही जो हमारा गेस्ट हाउस है उसी में उनको ठहराएंगे, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो अजनबी हैं। बस आज दीन के साथ हमारा यही मामला, हम चाहते हैं दीन एक कोने में रहे, सलात रूम कह लीजिए, कुरान रूम कह लीजिए, कोई एक कोना, दीन बस इधर, ये पूरे घर में ना फिरे। और दीनदार बस वो एक खास हद तक उनसे ताल्लुक है, हफ्ते में एक बार का और फिर कभी गम खुशी का, बस इसके बाद नहीं, रोज नहीं। तो आज दीन को हमने एक अजनबी मेहमान बनाकर बाहर के ड्राइंग रूम में बिठाना पसंद किया। गेस्ट रूम जो खूब फर्निश्ड होता है, कोई बुरा नहीं होता, अच्छा बहुत है। यानी आज हम दीन से प्यार बहुत करते हैं, इज्जत बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन खुद नहीं वो बनना चाहते, बेतकल्लुफ नहीं होते आज दीन के साथ। बेतकल्लुफ होना है उदखुलुफ़ सिल्मी काफ़ा, बोलिए दीन को आओ मेरे घर में, मेरी शादियों में आओ, मेरे गमों में आओ, मेरा सारा घर तुम्हारे लिए। हम कहते नहीं, ड्राइंग रूम में रखो इस दीन को, इज्जत करो इनको, प्यार करो, लेकिन इस दीन को जुर्रत ना दो कि ये हमारे खुशी गम में बोल सके। तो जब ऐसी अजनबियत हो तो लोगों को फिर वो नबी जादूगर और दीवाने ही लगते हैं। क्या ये इस बात की एक दूसरे को नसीहत करते गए हैं? नहीं, बल्कि ये सब के सब सरकश हैं। तो आप इनसे मुंह फेर लीजिए, आप पर कोई मलामत नहीं, और नसीहत करते रहें, यकीनन ये नसीहत ईमानदारों को नफ़ा देगी। नोट कीजिए, ईमान के बगैर नसीहत कारगर नहीं होती। लोग कहते हैं चुप करो, अपनी बातें अपने पास रखो, मेरी उस्ताद ना बनो, मुझे ना बताओ। क्या आज हमारे घरों में ये आवाज़ें नहीं उठती होंगी? लोग रोते हैं, हमने इतने प्यार से बात की, लोग कहते हैं आराम से बैठे। तो नसीहत से पहले ईमान दीजिए, आप किसी की अच्छी बुरी बात पर तनकीद ना कीजिए जब तक ईमान ना आए। और आगे देखिए वो मारूफ आए जो बच्चे बच्चे को पता है, ज़ारियात 56, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें, ना मैं इनसे रोजी चाहता हूँ और न मेरी ये चाहत है कि मुझे खिलाएं। मुशरिकीन अपने बुतों को खिलाते थे, प्रसाद रखते थे, उनके आगे खाने पानी ला के रखते थे, बाद में वो पति खाते थे, लेकिन कुलिया मौजूद था कि बुजुर्गों को और बुतों को खिलाना। अल्लाह कहते हैं मुझे तुम्हारे खाने नहीं चाहिए, मैं तो खिलाता हूँ। अल्लाह ताला तो खुद ही सब का रोजी रसान, तवानाई वाला और जोरावर है। तो ये है जी तख्लीक का मकसद, बतौर इंसान मेरा आपका मकसद हयात के, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ बींग अ ह्यूमन। पहली बात, अल्लाह से मोहब्बत कीजिए, इबादत कीजिए, मुकम्मल इताअत कीजिए। जो आज इबादत का मौजू आपके सामने रखा है उसमें ये सब चीज़ें आती, कमाल अल खुब कमाल अज़्ज़ुल, अल्लाह से मोहब्बत में भी शदीद, आजजी में भी शदीद, खौफ भी शदीद। वो रास्ता जिस पे ऊँट बहुत चले ना, उसको तरीकुल माबद कहते हैं, यानी इस इबादत को अपनी ज़िंदगी में डाल दो, रच बस जाए। ये ऊपर से कोटिंग ना हो कि तुमने मुंह पे फाउंडेशन लगा लिया, इस दीन को ऐसी खुराक बना लो कि तुम्हारे चेहरे पे कुदरती चमक आ जाए। ये है दीन। इबादत का रंग जब दिल में आता है और आंखों पे आता है, कानों पे आता है, तो नाफरमानी नहीं होती, फिर इंसान सिबगत अल्लाह ही व मन अहसनु मिन अल्लाह ही सिबगा पे जाता है, और ये इबादत का रंग है कि मेरा जीना मरना अल्लाह के लिए। फिर दूसरा हमारा तख्लीक का मकसद है बींग अ पर्सन, और वो क्या है कि शहादत हक की गवाहियाँ दो, कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास का हक अदा करो, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन के तौर पे मुसलमान बनते हुए मिशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिशन बनाओ, और फिर आगे जाकर हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक के लिए युज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, गलबा दीन का काम करना, इकामत दीन। अब आज कितनों को पता है, रात जाते पूछिए, किसी से पूछिए आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या, वो कहते हैं बच्चे पैदा करना, बच्चे पल जाएँ, बच्चे पढ़ जाएँ। मियाँ से पूछे वो कहेंगे कमा लूँ, ज़रा इस महीने का किराया निकल आए, गाड़ी का पेट्रोल चला जाए। बच्चों से पूछिए आपका मकसद क्या, वो कहते पास हो जाऊँ। स्कूल में जाना है, जवान से पूछिए वो कहता है कैरियर बन जाए, बस मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखला मिल जाए, और बड़े हुए गाड़ी मिल जाए, और बड़े हुए सारा सेलफोन मिल जाए। आज तो राह चलते 10 लोगों से पूछिए तो सही कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। बहुत भी नेकी के मूड में होगा कि आपको देख लेगा आपको दीनदार है तो कहेगा नमाज़ें पढ़ना, हालांकि नमाज़ें पढ़ना मकसद नहीं है, ये मकसद तक पहुँचाने वाला जीना है, सीढ़ी है। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो आप और मैं रिचुअल्स के नाम पे करते हैं ये मकसूद नहीं है, ये मकसूद तक पहुँचने के जीने हैं। नमाज जो ईमान दे उसको अल्लाह के रस्तों में भाग कर निकालिए। देखिए गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, क्या पेट्रोल डालना मकसद है? नहीं, पेट्रोल डालकर उसको चलाइए। गाड़ी घर में खड़ी करके पोर्च में कोई चला दे इंजन तो गाड़ी का फायदा होगा, बल्कि बैटरी भी डाउन हो जाएगी, गाड़ी हीट अप हो जाएगी। आप गाड़ी में पेट्रोल डालें फिर भागिए, सारा दिन काम करें उसकी टंकी कम हो जाएगी, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, फिर पेट्रोल पंप पे पहुंचिए, गैस स्टेशन पे जाइए। और अगर गाड़ी घर बंद कर दी तो? आज हम ईमान की गैस पेट्रोल डालते हैं गाड़ियों में, ईमान की गाड़ियाँ हमारे दिल, लेकिन हम नेकियों में भागते नहीं, फ़फ़ेरू इलल्ला नहीं है। तो फितनों में एक फितना धूरी अतात का भी है, मकसद या से नावाकफियत का फितना है, गफलत का फितना है। क्या होगा ऐसे लोगों के साथ जिनकी ज़िंदगियाँ अपनी चाहिए थी? और ख़ास तौर पर आप देखिए कि जब आप वाकई अल्लाह के बंदे बनना चाहते हैं ना, मकसद हयात तो हर वक्त नमाज तो आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कैफियत नमाज में रहेंगे। बंदगी 24/7 करनी है अगर, तो अल्लाह के खौफ को अपने दिल में जगह दीजिए, सुन्नतों के सांचे में ढलिए। आपका सोना, जागना, खाना पीना, नौकरी करना, घर साफ करना, ये सब इबादत बनेगा। हमारा दीन किसी एक कोने में रखने वाला दीन नहीं है, इसके बरक्स बस जिन लोगों ने जुल्म किया इन्हें भी इनके साथियों के हिस्से के मिसल हिस्सा मिलेगा, लिहाजा वो मुझसे जल्दी तलब ना करें। बस खराबी है मुनकिरों को इनके इस दिन की जिसका वादा दिए जाते हैं। तो क्या सीखा हमने? हद से गुजरने वालों का बुरा अंजाम, तकब्बुर करने वालों का बुरा अंजाम, सरकश लोग हक बताने वालों को बुरे अलकाब से बुलाते हैं, और तमाम मखलूक की पैदाइश का एक ही मकसद है अल्लाह की इबादत, और तबलीग में सब्र और जब्त की अहमियत है। इसके बाद आगे है सूरत तूर, क्या दिल को हिलाने वाली सूरत है। आप इन सारी सूरतों की तिलावत ज़रूर सुनिए इफ्तारी से पहले, अगर दिल नहीं चाह रहा था या हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की तो उस वक़्त आप ये तिलावत सुने, आप अपने दिल के अंदर एक इर्तियाश मालूम करेंगे। और तूर सब्ज़े वाले पहाड़ को कहते हैं, यानी ग्रीन जो माउंटेन्स होते हैं, ख़ास तौर पर यहाँ वो पहाड़ है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को शरीयत मिली थी। अल्लाह के नबी की शरीयत गारे हिरा में शुरू हुई और मूसा अलैहिस्सलाम को तो तौरात मिली वो कोहे तूर पे थी। और ये वो सूरतों में से सूरतें हैं कि जिन्होंने कई गैर मुस्लिमों के दिल खोले और वो इस्लाम में आ गए। अल्लाह हमें भी ऐसे ही बना दे। 52 नंबर की सूरत है, 49 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तूर वकिताब मस्तूर फी रक्किम मंशूर वल बैतिल मामूर। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले हुए वरक में है, और आबाद घर की और ऊंची छत की और भड़काए हुए समंदर की। और इन सारी कसमों के बाद जवाब कसम, इन्ना अज़ाब रब्बिकल वाक़े, बेशक आपके रब के अजाब का वादा वाक़े होने वाला है। इतनी कसमों के बाद इतनी बड़ी हकीकत, इसका यकीन आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। और जब ये शुरू होगा, मा लहू मिन दाफ़े, इसे कोई रोकने वाला नहीं। जब जलजला आता है तो उसको कौन रोक सकता है? इस दिन आसमान थर थराने लगेगा और पहाड़ चलने फिरने लगेंगे, और उस दिन झुटलाने वालों के लिए पूरी खराबी है। ये नोट कर लीजिए जुमला, जिस दिन खराबी है। फवैलो यौमैज़िल मुकज़्ज़िबीन। आप नोट कीजिए, आज से लेकर आगे तक ये जुमला बार बार आएगा सूरत मुरसलात में, तो बहुत दफ़ा ये जुमला, वैल, खराबी, तबाही, जहन्नम की वादी कि जिसमें लोग फेंके जाएंगे, किनको? झुटलाने वाले, मुकज़्ज़िब। तो अल्लाह न करे कुरान पढ़ने के बावजूद हम तकज़ीब करने वाले हों, डिनायल फॉर्म में ही रहें। वो कौन थे जो अपनी बेहुदा गोई में उछल कूद रहे हैं, यानी जिनके पास ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं? अल्लज़ी नफ़ी खौदी अलाबून, नाचो कूदो खाओ पियो। अल्लाह सुबहाना तआला ने इस कायनात में ज़िंदगी का एक मकसद दिया, जब लोग इस मकसद को नहीं जान पाते तो क्या होता है? फिर उनके इंटरेस्ट बदल जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ क़यामत का जिक्र सुनते पढ़ते क्या लगा है? क्या आज इतनी स्टिल स्ट्रॉन्ग कायनात है? क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह ताला इस कायनात का रेशो प्रोपोर्शन बदल देगा। बस आज देखिए 9.8 के साथ ग्रेविटी है, जिसकी वजह से चीज़ों का वजन भी और हम सीधे खड़े होते हैं। शायद अल्लाह ताला ग्रेविटी की फोर्स ख़त्म करेगा और पहाड़ उड़ने लगेंगे हवाओं में और ज़मीन और आसमान के तार ढीले होंगे। तो आज साइंस की रोशनी में भी देखें तो लोग अब इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि एक दिन जैसे सूरज सारा वेगा में जाएगा और कायनात ख़त्म हो जाएगी। और इन सब को पढ़ते वक्त मेरा आपका दिल ना डरे, मेरे आपके दिल पर अगर अल्लाह की खशियत ना आए तो फिर वही होगा फी हौजी यलबून। ना हाल हुलिये से पता चलता, ना मामलात से पता चलता कि ये कुरान पढ़ते हैं, ये क्लासेस में जाते हैं, लेकिन सिर्फ खेल तमाशा, फन फन फन। एक चीज़ आप अपने दिल में महसूस करेंगे, जब संजीदगी आने लगती है ना, तो ये बेकार मशगलें आपको अच्छे नहीं लगते। हर वक्त का खेल मजाक, ये भी आज के मुसलमानों को दीन से दूर करने का। आज दीन अजनबी क्यों हुआ? दीन के नाम पे जो मजलिस हैं उसमें भी फूल हैं और इत्र हैं और अगरबत्तियां हैं और रौनक है, और उसमें भी खूबसूरत अदाएं दिखती हैं, उसमें भी गानों ही की पेरोडी पे और उसी म्यूजिक पे नाते पढ़ी जाती हैं। तो ये है यलबून। इन चीज़ों से अपने आप को दूर करते जाएं, दीन के लिए संजीदा हो जाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप अपने अंदर एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाएंगे। फरमाए जिस दिन वो धक्के देकर आतिशे जहन्नुम की तरफ लाए जाएंगे, यही वो आतिशे दोजख है जिसे तुम झूठ बतलाते थे। अब बताओ क्या ये जादू है या तुम देखते ही नहीं हो? जाओ दोजख में, अब तुम्हारा सब्र करना या ना करना तुम्हारे लिए यकसां है। तुम्हें फक्त तुम्हारे किए का बदल दिया जाएगा। यकीनन परहेजकार लोग जन्नतों में और नेमतों में हैं, जो इन्हें इनके रब ने दे रखी हैं इस पर खुश खुश हैं, और इनके परवरदिगार ने इन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लिया। अल्लाह हमें भी बचा देना। तुम मजे से खाते पीते रहो इन अमाल के बदले में जो तुम करते थे। हाईलाइट कीजिए, कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। आज काम कीजिए, ये दुनिया काम की जगह, आखरत आराम की जगह। यहाँ ऑर्डर दीजिए, पे कीजिए, कल वहाँ खाने मज़े मज़े के खाएंगे। जन्नत के जिक्र सुनकर एकदम हूक उठती है कि हमने तो दुनिया ही जन्नत बना ली। हम तो कहते हैं लो हमने क्या करने, वहां का आगे यहाँ भी जो मिलते हैं। देखिए एक सरा सा नुकता समझिएगा, खास तौर पे पेरेंटिंग का एक पॉइंट है। जब अपने बच्चों को हर रोज अच्छा खाना देंगे, हर रोज मजे मजे के खाने खाएंगे, तो आप उनको कहें जन्नत में जाकर बड़े मजे के खाने होंगे, वो कहेंगे मामा व्हाट्स न्यू, वी हैव ऑलरेडी। बच्चों ने कहा एक माँ को मुझे नहीं चाहिए जन्नत तुम्हारी, बोरियत है। गाने होंगे उधर, फिल्में होंगी और थ्रिल होगा और स्पेल होगी, नहीं है फिर मामा आप जाइए, मुझे नहीं चाहिए जन्नत। मम्मा वहाँ भी आप बैठ कर हमें कहेंगे दर सुनो दर सुनो, दुपट्टा लो, नमाज पढ़ो। ये आज की मुस्लिम यूथ बोल रही है, मुसलमान बोन मुस्लिम, क्योंकि हमने उनकी दुनिया बड़ी खूबसूरत कर दी। तो एक दिन रूखा एक दिन सूखा, एक दिन गीला एक दिन खुश्क। जब दुनिया में ही सारे टेस्ट ले लिए तो आगे जाके क्या होगा? एक दिन आप भी तो सूखी रोटियां रखिए ना इफ्तारी पे, पानी में डुबो के खाएं। ईद के दिन का मेन्यू आज ले लीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु दौरे खिलाफत था, खुद खलीफा वक्त है, और ईद के दिन को इनको मिलने आया तो देखा पानी में सूखी रोटियां डुबो के खा रहे हैं। कहा अली रजी अल्लाह अन्हो, ईद का दिन और सूखी रोटियां? कहा मेरी ईद उस दिन होगी जब मेरा रब कहेगा कि जा मैंने तुझे बख्श दिया। आप पर मैं इस पे गौर करें, बराबर बिछे हुए शानदार तख्तों पर तकिए लगाए हुए, और हमने इनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से करा दिए। निकाह के लफ्ज पे गौर कीजिए, हूर को छोड़ दीजिए, हम हूरों का लफ्ज लेकर परेशान होते हैं। तो याद रखिए आज आगे जाके पढ़ेंगे, हूरें आम लोगों को नहीं मिलेंगी, ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद और जिद्दोजहद करने वालों को मिलेंगी, नफ्स के जिहाद वालों को मिलेंगी। हम ऊँचों पे ताव देकर नमाज पढ़ी ना हो और रोज अपने सामने आईने में खड़े करके खुद को अल्लाह के साथ मुकाबले हो रहे हैं, सुन्नतें ज़िबा हो रही हैं रोज, और हूरों के नाम पे हमारी आंखों में चमक आ जाए, तो ये गलतफहमी, ये अजनबियत का दीन है। सहाबा कराम भी हूरों के किस्सों के ऊपर खुश होते थे, लेकिन उससे पहले वो उसको डिजर्व करने वाले सारे काम कर चुके होते थे। और जो लोग ईमान लाए और इनकी औलाद ने भी ईमान में इनकी पैरवी की, हम इनको इनकी औलाद तक पहुंचा देंगे। अल्लाह अकबर। और इनके अमल से हम कुछ कम न करेंगे। हर बंदा अपने अमाल के साथ गिरवी है। हम इनके लिए मेवों यानी फलों और मरगूब यानी रगबत से खाए हुए गोश्त की रेल पेल कर देंगे। जन्नत की नेमतों में से एक नेमत कि अल्लाह ताला जहन्नुम के धक्कों से बचा लेगा, क्योंकि देखिए जहन्नुम में नफ्सियाती और जज्बाती अजाब भी होगा, धक्के लड़ाई झगड़े ताने होंगे, शर्मिंदगी का एहसास होगा। लेकिन यहाँ उन जन्नतियों का जिक्र है कि जो हकीकत में इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहे थे। कैसे जन्नत के अंदर ये सब कुछ मिलेगा, इसके लिए दुनिया में मेहनत करनी पड़ेगी। माँ कुंतुम, देखिए आयत 16 में आपने क्या देखा, माँ कुंतुम थे तुम, पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, जिंदगी में किया, लिमिटेड टाइम था, आज अनलिमिटेड अजर मिलेंगे। लोग कहते हैं क्या हुआ अगर 10-15 साल इन्होंने नेकियां कर ली तो अब इनको हमेशा की जन्नत क्यों मिले, तो अल्लाह कहते हैं कुंतुम, इनको 100-100 सालों की उम्र भी मिलती तो ये यही काम करते रहते। इनको अल्लाह ताला ने इस बात का बदला दिया। फिर औलाद की बात, अब देखिए आप जन्नत में जाएं और बच्चे वहाँ ही ना हो, कभी दुनिया में किसी जगह घूमने जाएं बच्चे साथ ना हो, मज़ा आता? अपनों के बगैर तो खुशियाँ भी गम बन जाती हैं। और ये जो लस रहीन है ना, अपनी एक एक नेमत को गिने, प्लेज में रखी हुई है, मॉर्गेज देना पड़ेगा। आज खुद पूछिए, मैंने अल्लाह की एक एक नेमत का बिल पे कर दिया? आज पे ऑफ नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर पे करना पड़ेगा, और वहाँ की नेमतों को लेने से पहले यहाँ इसको ऑर्डर भी करना पड़ेगा। और फिर देखिए अटकेलियाँ, मोहब्बत काम तो कोई है नहीं वहाँ, ना नमाजें हैं, ना रोज़े हैं, ना कुरान है, समझ नहीं आता कि जाके करेगा क्या। दिल दुखी हो जाता है सोच के अल्लाह वहाँ कुरान नहीं पढ़ सकेंगे, अल्लाह वहाँ ये इल्मी महफिलें नहीं होंगी। तो अल्लाह कहते हैं कि ये करके तो आए हो, वहाँ पता नहीं क्या कुछ होगा, हम क्या जाने। हम तो बस एक दफ़ा कहते हैं कि अल्लाह कदम जन्नत में डलवा दे, अगले रास्ते फिर खुद ही आसान होंगे। ये तनाज़ाउ नफीहा का असल ला लगवन फीहा वला तासीम, खुश तबई के साथ एक दूसरे से जामे शराब छीना चपटी करेंगे, जिस शराब के सुरूर में ना तो बेहुदा कोई होगी ना गुनाह, और इनके इर्द गिर्द इनके नौ उमर गुलाम फिर रहे होंगे, कोई मोती थे जो ढके पड़े थे, और आपस में एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर सवाल करेंगे। देखिए दुनिया में जब दीन आता है तो फिर बंदे को बस अपने घर के मुलाजमों से भी पर्दा करना पड़ता है, बड़े घरों में शेफ्स भी होते हैं, कुक भी होते हैं, ड्राइवर बाबे भी हैं, अब क्या इनके सामने पर्दा करें। अल्लाह कहता है थोड़े दिन का सब्र कर लो, घर के गैर मर्दों से भी खुद को छुपा लो, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ कुछ एटिकेट्स आने चाहिए घरों में साथ रहने के, तो वहाँ जन्नत के खादिम। फिर आप देखिए दुनिया में अक्सर जो खादिम होते हैं वो बात समझते नहीं, कहो कुछ करते कुछ, कहा जन्नत के अंदर खादिम भी तुम अपनी पसंद के ले आओगे, जैसे चाहोगे, गोल मटोल, गोरे बच्चे, खूबसूरत, तुम्हारे वहाँ खूबसूरत मामले करेंगे। अब वहाँ एक माजी की याद आ गई, क्या देखिएगा आयत 26, कहेंगे कि इससे पहले हम अपने घर वालों के दरमियान बहुत डरा करते थे। ये है वो डर जो मुबारक है, मुशफिकीन, किस चीज़ से डरते थे? ये डर था कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, इनके हकूक अदा करना चाहते थे, बस वो घर वाले गलत चीज़ें देख सुन रहे होते थे, हम एक ही छत के नीचे रहते हुए उनके गुनाहों में शरीक नहीं होते थे। इंसान देखिए बहुत सारे गुनाह घर वालों में करता है, गिबतें चुगलियाँ घर वालों के साथ मिल के होती हैं, दोस्तों में बैठकर बेलगाम हो जाता है, तो अपने करीबियों में रहकर डरिए। अगर वाकई चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, बस अल्लाह ताला ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया और हमें तुंदो तेज गर्म हवाओं के अजाब से बचा लिया, हम इससे पहले ही इसकी इबादत किया करते थे। हाईलाइट कीजिए बंदगी का रंग, दुनिया में आएगा वहां नहीं होगा, यहाँ ले आइए, वहां आपको अल्लाह आपकी मर्जी का रंग देगा, बेशक वो मुहसिन और मेहरबान है। तो क्या पता चला कि जन्नत पाने के लिए दुनिया में कुछ करना होगा, और आप देख रहे हैं कि जन्नती सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को दे रहे हैं, अल्लाह से ही कुछ मांगते, अल्लाह से मांगा ये दिया, तीन सिफात पढ़ी हमने इधर, घर वालों में डर कर रहना, सारा क्रेडिट अल्लाह को देना और दुआएं मांगना। अगर आपकी ये आदत है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह देगा। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है तो आप समझाते रहिए, क्योंकि आप अपने रब के फजल से ना तो काहिन ना ना दीवाने, क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है? हम इस पर जमाने के हवादिस यानी मौत का इंतजार कर रहे हैं, यानी दुश्मन आपकी मौत की दुआएं कर रहे थे कि आप जाए ताकि हमारे रंग में भंग खत्म हो। कह दीजिए तुम मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में हूँ। क्या इनकी अकलें इन्हें यही सिखाती हैं, या ये लोग हैं ही सरकश? क्या ये कहते हैं कि इस नबी ने कुरान खुद घड़ लिया है, यानी कोई अल्लाह ने नहीं कहा, ये अपनी बनी हुई बातें और खुद ही बातें करते हैं, ये टोन थी उनकी। वाक्या ये है कि वो ईमान नहीं लाते। अच्छा अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक और बात भी तो ले आए, यानी इनके ये दावे अगर वाकई सच्चे हैं तो फिर इनसे जरा कुछ बात तो कीजिए। अब चंद सवाल हैं और इस बारे में आपको सवाल जवाब बहुत मिलेंगे। क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद बहुत पैदा हो गए, या खुद पैदा करने वाले हैं? क्या उन्होंने ही आसमान और जमीन को पैदा किया, बल्कि ये यकीन न करने वाले लोग हैं? या क्या इनके पास तेरे रब के खजाने हैं, या इन खजानों के ये दारोगा हैं, चौकीदार, सिक्योरिटी मैन? या क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर सुनते हैं? अगर ऐसा तो इनका सुनने वाला कोई रोशन दलील पेश करे, क्या अल्लाह की तो सब बेटियां हों और तुम्हारे यहाँ लड़के हों? क्या तू इनसे उजरत तलब करता है कि ये इसके तावान यानी बोझ या इसके जुर्माने से बोझल हो रहे हैं? गबीर, क्या इनके पास इल्मे गैब है जिसे ये लिख लेते हैं? क्या ये लोग कोई फरेब करना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि फरेब खुर्दा काफिर ही हैं? क्या अल्लाह के सिवा इनका कोई माबूद है? हरगिज़ नहीं। सारे सवालों का जवाब हरगिज़ नहीं। तो सुन लीजिए कि अल्लाह इनके शिर्क से पाक है। अगर ये लोग आसमान के किसी टुकड़े को गिरता हुआ भी देख लें तब भी कह देंगे ये तो तह बतह बादल है। जब दिल नहीं मानता ना तो इंसान फिर इसी किस्म की बातें करता है। अजाब सामने भी वो कहते नहीं, तो इन्हें छोड़ दे यहाँ तक कि इन्हें इस दिन से सबका पड़े जिसमें ये बेहोश कर दिए जाएंगे, जिस दिन इन्हें इनका मकर कुछ काम न देगा और न वो मदद किए जाएंगे। बेशक जालिमों के लिए इसके अलावा और भी असाब हैं, लेकिन इन लोगों में से अक्सर बेइल्म हैं। तू अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले, बेशक तू हमारी आंखों के सामने है। यानी आपके साथ इस दीन के मामले में जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम एक एक चीज को देख रहे हैं और गिन रहे हैं। करिए क्या, जब मुखालफतें हों, जब दीन के नाम पे आजमाइशें हों, तो क्या कीजिए? वस्बिर लि हुक्मि रब्बिक फइन्नक बिअय्युनिना वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक हीना तकूम। तो अपने रब के हुक्म के इंतजार में सब्र से काम ले, बेशक तुम्हारी आंखों के सामने है। सुबह को जब तू उठे अपने रब की पाकी और हमद बयान कर, और रात को भी इसकी तस्बीह पढ़, और सितारों के डूबने के वक्त भी। नमाजों के टाइम भी हैं इसमें, तस्बीह की अहमियत भी है। याद रखिए आज के दौर के गुरबा को, एलियंस लगने वालों को इन्हीं नसीहतों पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करते जाएं, सुबह शाम तस्बीह के साथ रहें, सुबह शाम की दुआएं पढ़ें। आज भी हकीकत में उम्मत की शाम है। आज भी हमें हाथ की उंगलियों की तस्बीहों पे उम्मत के लिए दुआएं करनी है, रब से माफ़ियाँ मांगनी है, उसके नाम को बुलंद करना है, अल्लाह पे नज़रें लगा लें। कोई भी तस्बीह जो याद रहे शऊर के साथ उठते बैठते पढ़ा करें। और ख़ास तौर पे अब देखिए अदबार, सहरी से पहले का वक्त, आजकल कितना खूबसूरत मौका है आपके मेरे लिए इस वक्त को इस्तेमाल करने का। अल्लाह ताला हमें इस वक्त की कदर की तौफीक अता फरमाए। क्या सीखा सूरत तूर से? जन्नत के मनाजिर देखे जिसको देख कर दिल में तलब आई, अल्लाह हमें वहाँ पहुँचा दे। साले औलाद अनमोल असासा, या हमने देखा कि माँ बाप पीछे हैं बच्चे आगे आगे, तो अल्लाह ताला बच्चों की वजह से माँ बाप को भी जन्नत में अपग्रेड कर देगा, उनके दर्जे बुलंद हो जाएंगे। फिर झूठे दावे करने वालों के पास दलाइल नहीं होते, तौहीद रबूबियत और अलूहियत के दलाइल थे, और मुनकरीन की चालें इन्हीं पर उल्टी पड़ती हैं। अल्लाह ताला हमें इन सब सीखी हुई बातों पे गौर करने वाला बना दे। अगली सूरत है नजम। सितारे को भी कहते हैं, जड़ी बूटियों को भी कहते हैं। यही लफ्ज़ सूरत अर-रहमान में जड़ी बूटियों के लिए इस्तेमाल होता है। 53 नंबर की सूरत है, 62 आयतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज यानी जो बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा तक था, उसका जिक्र इस सूरत में आता है। इतनी अहम सूरत है और मुश्किल आयतों में से चंद मुश्किल आयतें, ख़ास तौर पे मेराज के नाते से इसकी डिटेल तफसीर सुनने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी ने मेराज के मौके पे क्या देखा क्या सुना, उसी से सूरत शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मीज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यन्तिकुअनिल हवा इन हुवा इल्ला वाहयुन यूहा। कसम है सितारे की जब वो गिरे कि तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की ना टेढ़ी राह पर है और ना वो अपनी ख्वाहिश से कोई बात करते हैं। यह है वही की सच्चाई। अल्लाह आज भी मुझ समेत हर कुरान पढ़ाने वाले को अपनी ख्वाहिशात से कोई बात भी कहने की तौफीक ना दे। जो बात कहें वही कहें जो अल्लाह और उसके रसूल ने सुझाई। वो तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। इसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया। जो जोरावर है फिर वो सीधा खड़ा हो गया। ये सब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आपके जो बीच में मामलात चल रहे थे मेराज के मौके पे, उसकी बातें हैं। और वो बुलंद आसमानों के किनारों पर थे, फिर नज़दीक हुए और उतर आए। बस वो दो कमानों के बराबर फासला रह गया, बल्कि इससे भी कम। बस उसने अल्लाह के बंदे को वही पहुंचाई जो भी पहुंचाई। दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे पैगंबर ने देखा। क्या तुम झगड़ा करते हो इस पर जो पैगंबर देखते हैं? लोगों ने इनकार किया था कि ये नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं, तो उसका जिक्र है इसमें। इसे तो एक मर्तबा और भी देखा था सिदरतुल मुंतहा के करीब। इसी के पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो इस पर छा रही थी, सोने की टिड़ियाँ। ना तो निगाह बहकी ना हद से बड़ी। यकीनन इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बास निशानियां देख ली। सफरे मेराज का पढ़ते हुए, खास रूप आयतों को पढ़ते हुए एक अंदर खिंच पड़ती है कि अल्लाह कभी जन्नत में जाकर हम भी ये देखेंगे। याद रखिए आसमानों के ऊपर बड़ी खूबसूरती है, एक आसमान पूरा सोने का चांदी का, कहीं लूलू और क्या क्या है, ये सात आसमान ऐसे नहीं है जैसा ये पहला है। तो मरते ही जो रूह निकलती है पता नहीं उसको क्या क्या दिख रहा होता है। अल्लाह हमें भी ईमान की हालत में ये दिखाए और हमारी रूह ये सारा कुछ देखते हुए जन्नत में पहुंचे, क्योंकि आज थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करेंगे। क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और मनात तीसरे पिछले को? क्या तुम्हारे लिए लड़के और लड़कियां हैं? ये उनके बुजुर्ग थे, बड़े बड़े उनके नाम है। ये तो बड़ी बेइंसाफी की तकसीम है, दरअसल ये सिर्फ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने इनके लिए रख लिए हैं। अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं उतारी, ये लोग सिर्फ अटकल के और अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़े हुए हैं, और यकीनन इनके रब की तरफ से इनके पास हिदायत आ चुकी है। क्या हर शख्स जो आरजू करे इसे मुयस्सर है? यानी आप ये चाहते हैं कि जो मांगे वो अल्लाह फौरन हाजिर कर दे? अल्लाह ही के हाथ में है ये जहान भी और वो जहां भी, और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी नफा नहीं दे सकती। मगर ये बात और है कि अल्लाह ताला अपनी खुशी और अपनी चाहत से जिसके लिए चाहे इजाजत दे दे। बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो फरिश्तों के औरतों वाले नाम मुकर्रर करते हैं। देखिए सारी देवियां फीमेल की होती हैं, ईमान बिल मलाइका की बिगड़ी हुई शक्ल है आज देवियों की सूरत में। हालांकि इन्हें इसका इल्म नहीं, वो सिर्फ अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक वहम और गुमान हक के मुकाबले में कुछ काम नहीं देता। तो आप इनसे मुंह मोड़ लीजिए जो हमारी याद से मुंह मोड़े और जिनका इरादा सिवाय दुनिया की जिंदगी के कुछ और नहीं। चेंज योर कंपनी, ये हुक्म है इधर। जब आप देखते हैं कि आप अपनी बात कर ही नहीं सकते और अगले का आप पे गलत चीज़ों का असर हो रहा है, तो फिर आपको एक एक कदम पीछे आने का मशवरा है इन आयतों में। यही इनके इल्म की इंतहा है, यानी सिर्फ दुनिया का इल्म है इनकी बस इंतहा। आपका रब इससे खूब वाकिफ है, जो इसकी राह से भटक गया वही खूब वाकिफ है इससे जो राह याफ्ता है, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, ताकि अल्लाह तआला बुरे अमल करने वालों को इनके अमाल का बदला दे और नेक काम करने वालों को अच्छा बदला अता फरमाए। अल्लाह तआला हमें भी इसकी तौफीक दे। तो क्या देखा, सूरत नजम की आयत 30 को खास तौर पे सामने रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बस ख्वाहिशों से जन्नत मिल जाएगी, इरादों से तमन्नाओं से, अल्लाह कहते हैं नहीं, अधूरी कोशिशें हैं आज जन्नत को पाने की। इस फितने के शिकार लोग क्या करते हैं, दुनिया का तालिब सिर्फ दुनिया पाने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान अगर चाहता तो दुनिया के साथ दीन की भी कोशिश कर सकता था। अल्लाह की दीवी नेमतों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करके अल्लाह की रजामंदी हासिल की जा सकती है। अपने वसाइल को अपनी ज़ात के साथ अल्लाह के रास्ते में लगाकर नेकी कमा सकता है इंसान। लेकिन अफसोस कि तालिबे दुनिया हर चीज़ होते हुए भी आखिरत में अधूरी कामयाबियाँ पाएगा। अब इसके आगे एक और खूबसूरत पैकेज है कि वाकई अगर चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत खूबसूरत हो जाए तो क्या करो। आयत नंबर 32 से, अल्लज़ीना यजतनिबूना कबाइर अल-इस्मि वल-फवाहिश, इन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को बचा ले, और बेहयाई से भी बचते हैं सिवाय किसी छोटे गुनाह के, बेशक तेरा रब बहुत कुशादा मगफरत वाला है, वो तुम्हें बखूबी जानता है जबकि इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और जबकि तुम अपनी माओ के पेट में बच्चे थे, जनीन फीटस। अल्लाह ताला का आपसे ताल्लुक बड़ा पुराना है, अभी आप दुनिया में भी नहीं आए थे, तो अल्लाह ताला आपको तब से जानते हैं। बस तुम अपनी पाकीज की आप बयान न करो, वही परहेजकारों को खूब जानता है, यानी अल्लाह ताला आपके रगो रेशे को भी जानता है, आप कितने पानी में और क्या बनते फिरते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान किस तरीके से अल्लाह ताला से छुपने की कोशिशें करता है, तो मक्का वालों के सारे शिर्क की बातें करके जो उन्होंने लात मनात उज़्ज़ा की तरफ डाल दिया, इसी तरह शिफात का बड़ा ही अधूरा कॉन्सेप्ट था उनका। क्या आपने इसे देखा कि जिसने मुंह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया? क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है? अपना मुहासबा कीजिए, पहले तो देते ही नहीं, फिर देते हैं तो थोड़ा, और फिर एकदम रोक लेते हैं, बस बस। आजकल हालात ख़राब है, ज़रा सी हालात की सख्ती गर्मी आई सारा जोर दीन पे जाता है और दीन के नाम के साथ जो भी चीज़ है। क्या इसे इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा? क्या इसे इस चीज़ की खबर नहीं दी गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के और वफादार इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में था? इसको हाईलाइट कीजिए, आयत 37, वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम बावफा थे। कितने कुछ साल जिए होंगे इब्राहिम, 100 साल? आज कितने सौ साल बाद तक उनका जिक्र है, तो बावफा लोगों की अल्लाह इज्जत बड़ी करता है। आज दुनिया में कामयाबियों में आगे बढ़ने का यही असूल है। आप वफा शौहर बन जाइए, दीन के साथ भी, दीनदारों के साथ भी, दीनी इदारों के साथ भी। अगर अल्लाह ने आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया है तो उसके साथ वफा कीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपको कहाँ पहुँचाता है, कितने रंग लगते हैं। और क़यामत का दिन तो वो दिन है कि अल्लाह तज़ीरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कि कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी कोशिश खुद इसने की। जी वन अल सलील इंसान इल्ला मसा, कोशिशें देखी जाएंगी। हमारा दीन एफर्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, आयत उसकी दलील है। क्योंकि हर एक को अल्लाह ने मुख्तलिफ माहौल में पैदा किया। आपका बहुत नेकियां करना हो सकता है, इतना फायदा ना दे आपको क्यामत के दिन जहां किसी नए बंदे का छोटी सी नेकी करना है। और ये कि बेशक इसकी कोशिश अन करीब देखी जाएगी, फिर इसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह की सुन्नत बताई जा रही है। और ये कि आपके रब ही की तरफ पहुंचना है, और ये कि वही हंसाता है और वही रुलाता है। कभी न्यू बॉर्न बेबी को मुस्कुराते देखें तो इस आयत को याद कीजिएगा। और रोते भी हैं तो समझ ही नहीं आता ये रो क्यों रहे हैं, ये हो क्या गया। आपने कभी नोट किया अपने घर के बच्चों को ऐसे ही रोते हैं? और वैसे ही हंसते हैं। हमारी फैमिली में एक बच्चा है जिसके लिए मैं कहती हूँ कि स्माइल विदाउट रीजन, उसको मुझे नहीं समझ आता खुशी क्या होती है। हर वक्त स्माइल स्माइल हंसता है, फरिश्ते हंसाते हैं, अल्लाह हंसाता है। आप भी कभी रोते हैं ना तो अल्लाह ही के हुक्म से रोएं, रोया करें। और अल्लाह के रास्ते में और जन्नतों की खुशखबरियां सुन के अपने आप मुस्कुराते नहीं आप? आपका दिल गवाही देगा आपको, जब आपको जन्नत की उम्मीद ऐसे लगे कि वहां फिर रहे हैं। और जब जहन्नम का जिक्र सुन के आप रोने लग जाएं तो आप ईमान के करीब पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, वही मारता है वही जिलाता है यानी जिंदा करता है। और ये किसी ने जोड़ा यानी नर मादा पैदा किया, नुतफे से जब वो टपकाया जाता है। और ये किसी के जिम्मे दोबारा पैदा करना है। और ये कि वही मालदार बनाता है और सरमाया देता है। फैक्ट्रियां नहीं खिलाती, दुकानें नहीं खिलाती, टैक्सियां नहीं खिलाती, अल्लाह खिलाता है। जॉब नहीं देती, रेस्क अल्लाह देता है। और ये कि वही शेरा सितारे का रब है। और ये कि इसी ने आदे उला को हलाक किया। शेरा एक बड़ा मारूफ सितारा था, बहार के साथ कुछ उससे टोटका रखा हुआ था। बड़ी इसकी इज्जत करते थे, इसके आगे सजदे करते थे, अल्लाह ने उसी का यहाँ जिक्र कर दिया। और समूत को भी, जिन में से एक को भी बाकी न रखा। और इससे पहले कौम नूह को यकीनन वो बड़े जालिम और सरकश थे, और बस्तियां वो उलटाई गईं, कौम लूत की तरफ इशारा है। इसको भी इसी ने उलट दिया, फिर इस पर छा गया जो छा गया यानी अजाब। पस है इंसान तो अपने रब की किस किस नेमत के बारे में झगड़ेगा? चंद सेकंड सोचिए, कुछ नहीं मिला तुझे, जो मिला पहले उसका हक तो अदा कर। ये नबी डराने वाले हैं पहले डराने वालों में से। आने वाली घड़ी करीब आ गई है, अल्लाह के सिवाय इसका वक्ते मुअय्यन पर खोल दिखाने वाला और कोई नहीं। तो इन नबियों की कदर करो। बस क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो और हंस रहे हो, रोते नहीं? दूसरी बार इसी सूरत में जिक्र है रोने का। बल्कि तुम खेल रहे हो, तमाशे, फन, फ्रॉलिक। अब अल्लाह के सामने सजदे करो और उसी की इबादत करो। आयते सजदा है। तो क्या सीखा सूरत नजम से? बेल महज गुमान और सुनी सुनाई बातों पे जिंदगी गुजारता है। अल्लाह जिसे चाहेगा सिफारिश की इजाज़त देगा। ये सिफारिश क्या, जरा सा समझिए। I-26 में बात हुई थी, आप देखिए कि सिफारिश सिफारिश है। जो कोई जन्नत में किसी के जाने की सिफारिश करेगा वो फैसला नहीं होगा। बस आप देखिए कि एक स्कूल में बच्चे पास होते हैं, फिर उनका ग्रेजुएशन डे होता है, तो शहर के किसी मिनिस्टर या किसी बड़े चीफ को आप बुलाते हैं मेहमान खसूसी के तौर पे, चीफ गेस्ट। अब क्या होता है, वो चीफ गेस्ट बच्चों में गिफ्ट और इनाम और सनदे बांटते हैं। क्या ये उनका फैसला होता है? नहीं, लिस्टें तो स्कूल वालों ने तैयार कर दी और सब कुछ तो उनके हाथ में था। सिर्फ इज्जत दी, जस्ट फॉर ऑनर। अंबिया कराम और दीन का काम करने वाले वो लोग जो अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बन गए, दुनिया में उनको खातर ख्वाह इज्जत नहीं मिलती, प्रोटोकॉल नहीं मिलता। अल्लाह ताला उनको क्यामत के दिन उनकी कोशिशों के बदले देगा, स्टेज पे बुलाया जाएगा। आइए आप सिफारिश कर दीजिए, ये इसको दे दी। फैसला अल्लाह का होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट रसूलों, नबियों और शहीदों और जिससे अल्लाह सिफारिश करवाना चाहे उसके जरिए होगी, लेकिन होगी उसकी जिसकी अल्लाह चाहे। फिर सर हमने देखा कि अल्लाह को भुला देने वाला किसी का दोस्त नहीं होता। वो कहते हैं ना, तू मेरा नहीं बनता, अपना तो बन। तमाम मखलूक की आखिरी मंजिल अल्लाह के पास लौटना, ये है पैगाम इन सूरतों का। آخرت کا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے. اگلی سورت قمر ہے، 54 نمبر کی سورت اور 55 آیتیں ہیں. آپ رب دیکھیے، نجم، پھر سورج، ستارے، یعنی بے جان چیزیں، ان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تو اللہ کی مخلوق ہیں، دوسرا یہ کہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. جیسے شیرہ کی بات ہوئی نا، تو ستارہ تھا، ہو سکتا ہے اس سے ملتا ہوا نام نجم رکھ دیا گیا. اب قمر سورت میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا شق قمر کا، اس کا ذکر ہے اس میں. لوگ اللہ کے نبی سے نشانیاں مانگتے تھے، اللہ نے بڑی نشانی دکھا دی. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. اللہ کے نبی کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں ہوا تھا. آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو رحیق و مختوم میں سے اس چیپٹر کو پڑھ لیجئے. معجزہ ہے، ختم ہو گیا، چند سیکنڈ کے لیے ہوا تھا، لیکن یہ قرآن ابدی معجزہ موجود ہے جو لوگوں کے دلوں کو پھاڑنے کے لیے کافی ہے. یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے. انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے. یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے. ہر کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان رونی باتوں نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. پس ہے نبی، آپ ان سے اعراض کیجئے، جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، سور پھونکا جا رہا ہے، ہی جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. لوگوں کی جرت نہیں ہوگی اس دن کچھ کرنے والی. بارش کے بعد وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں آتی ہیں نا، اس کو ذہن میں لے آئیے. ایسے لوگ بالکل کمزور شکل میں قبروں سے نکلیں گے، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے، اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا. ذرا ہائی لائٹ کریں گے آیت نمبر 9 کو. کبھی مجھے آپ کو اس دین کے کام پہ جھڑکیاں پڑی؟ لوگ تو ہمیں پھول پیش کرتے ہیں، ان کو تو گالیاں ملتی تھی اور ان کے اوپر تو پتھر پڑتے تھے. اب ایک گھر میں کسی سے جھڑکی پڑ بھی گئی تو اپنا قصور ڈھونڈیے کہ آپ نے غلط وقت پہ غلط کام کیا. یاد رکھیے، دین کے کام کو اپنے لیے ایک اسکیپ روٹ نہ بنائیے. بعض لوگ کہتے ہیں گھر والے ناراض ہیں، شوہر ڈانٹتے ہی رہتے ہیں. میاں بیچارے ذرا تھوڑا سا تبلیغ میں نکل جائیں تو بیگمات ڈانٹتی رہتی ہیں. تو ابراہیم کو تو پوری قوم نے ڈانٹا. اس کو لکھ لیجئے، وستجر فدا ربہ انی مغلوب فانتصر. پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے میں سے کھول دیا، تیز بارش، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا پانی خوب جمع ہو گیا، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا. ٹوٹی پھوٹی کشتی نوح کی اللہ کے حکم سے بچ گئی. وجہ، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، یعنی وہ کام جو اللہ کی وحی کی روشنی میں ہو اس کا انجام بخیر ہوتا ہے. بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر رکھا. بس کوئی ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ پوچھئے خود سے، میں ہوں نصیحت کے لیے سننے والوں میں سے، یا بس ایسے ہی بار بار اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں؟ فہل میں مدکر، تو آپ کہیے جی اللہ تعالیٰ، میں پورے شعور سے سن رہی ہوں، میں بیچ میں سو نہیں رہی، نیند تو آ رہی ہے پر ٹیک چھوڑ دیا، وضو کر لیا، لکھ رہی ہوں تاکہ نیند نہ آئے اور بور نہ ہو جاؤں، فون تو ویسے ہی اس وقت بند ہے میرا. تو نصیحت کے لیے سنیے آپ بھی اور میں بھی. بتاؤ میرا عذاب اور میرے ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں؟ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں؟ تو پیچھے بھی بات ہوئی تھی، تذکر کے درجے پہ قرآن بڑا آسان ہے، تدبر میں مشکل، اور یہ ہر ایک کر بھی نہیں پاتا. تو بار بار دیکھ رہے ہیں فہل مم مدکر، تو دیکھیے آیت 17، ہم قرآن کو نہیں سیکھ سکتے، بڑا مشکل ہے. یہ ہے فتنہ آج کے مسلمان کا، اور شیطان دھوکے ڈالتا ہے، نہ 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 قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، یہ نہیں اٹھا سکتے، بے ادبی ہوگی، اور اتنا اونچی ہی رکھ دیتے ہیں کہ پھر اٹھا ہی نہ سکے. اور ایک اور دھوکہ ہے، قرآن سیکھنا علماء کا کام ہے، ہمارا آپ کا نہیں. قرآن سیکھنے سے پہلے 14 علوم ضروری سیکھو، پھر قرآن سیکھنا. اور اب تو عمر بڑھ گئی ہے، اب کہاں یادداشت ہوگی. کئی سسٹرز ایسی ہیں جو کہتی ہیں ہم سبیل الجنہ کیسے کریں، اس میں تو لکھنا پڑھنا پڑتا ہے. تو میں ان کو ہمیشہ مثال دیتی ہوں، بسم اللہ، انگوٹھا لگانا بھی آتا ہے نا، تو آپ یہ کورس کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ایسی مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، کم از کم دنیا سے جاتے ہوئے لفظی ترجمہ تو یاد کریں. تو ہماری بزرگ خواتین، ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں वो भी ऐसे कोर्सेज में आगे आ सकती हैं जिसमें लफ्जी तर्जमा याद कराया जाता है और उनकी पूरी मदद की जाती है इस मामले में। इसके बाद देखिए कि अगर शैतान के इन धोखों से खुद को निकालें तो हकीकत क्या है, वही जिसको बार बार कहा जा रहा है, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। कुरान हर उम्र के लिए, हर जुबान बोलने वाले के लिए आसान है, और हम उर्दू बोलने वालों के लिए तो बहुत आसान है। अल्फाबेटिक ही सारे मिलते हैं अरबी उर्दू के, सिर्फ तीन चार के अलावा। अगर उर्दू स्पीकिंग लोगों ने कुरान ना सीखा ना लफ्जी तर्जमे से, तो बाकियों को भी हक है कि वो ना सीखें। अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे। कुरान सीखने के लिए इस्तेतात भर कोशिश करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कुरान के सफ़र में कदम बढ़ाने से अल्लाह आसानी पैदा करते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि बच्चियां हैं वो उर्दू समझ तो लेती हैं, लिख नहीं सकती, क्या वो उर्दू का स्पेलुल जाना ज्वाइन कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको पूरी असिस्टेंस मिलती है कि आप अगर उर्दू में सुने, नोट्स भी आप उर्दू के लेंगे, और उसके बाद फिर आप इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज है, नॉर्वेजियन में और फ्रेंच में आप उसको कर सकते हैं। उसमें स्पेशल ग्रुप्स ऑफर किए जाते हैं, यानी कुरान सीखना है हर कीमत पे। जो जिस दर्जे पे जाकर सीखना चाहे वो उससे फ़ायदा उठा ले। कौम आत ने भी छुटलाया, आपस कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें, हमने इन पर तुंदो तेज मुसलसल चलने वाली हवा एक मनहूस दिन में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर दे पटकती थी, कोई वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं, बस कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। चंद सेकंड सोचिए कि अल्लाह आजकल भी तो नहीं इंसानियत से ये सवाल कर रहा, डरे हो कि नहीं? यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अजाबों से ना डरा, हमें कुरान से ही डरा दे। याद रखिए, जब लोग तुग्यानी पर आते हैं ना, तो अल्लाह ताला अपनी किसी एक नेमत को सरकश कर देता है। जैसे इन कौम आद की बात हो रही है, अल्लाह ने हवा को थोड़ा सा बढ़ाया, ज़रा सी स्पीड बढ़ा दी और कोई चीज़ वहाँ ठहर ना सकी। एक और कौम, कौम समूत। कौम समूत ने डराने वालों को झुटलाया और कहने लगे, क्या हम ही में से एक शख्स की हम फरमा बरदारी करने लगे? देखिए ये होता है किबर, तकब्बुर, जो लोगों को हक की तरफ आने नहीं देता। हम सीखें, हम बताएं, हम पढ़ें, हम तो पढ़ाते हैं, पढ़ाते हुओं को भी पढ़ने की जरूरत होती है। और ये अंदर की बड़ाई इंसान की ग्रोथ को रोक देती है। और अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा? तब तो हम यकीनन गलती और दीवानगी में पड़े हुए होंगे। क्या हमारे सबके दरमियान सिर्फ इसी पर वही उतारी गई, यानी बस यही है जिनको आता है सब कुछ और कोई नहीं है दुनिया में? ये अंदर की सवाल जवाब की कैफियत होती हैं जो अक्सर दिलों में आती हैं। अल्लाह ताला उसको इस किताब में लाकर हमारी इसलाह फरमा रहा, नहीं बल्कि वो झूठा शेखी खोर है, नौजबिल्ला, ये अल्लाह के नबी पे बातें घड़ते थे। हाँ जी, बस इनको तो अपने आप से जोड़ना है, और बस ये तो झूठे हैं, नौज़ शेखियाँ मारते हैं और अपनी तारीफें करते हैं, नाउज़ुबिल्ला सुम्मा नाउज़ुबिल्ला। देखिए बारिश एक ही होती है, फूलों की क्यारी पे पड़ेगी ना तो खुशबू उठेगी, और कचरे के ढेर पे आएगी तो बदबू आएगी। कुछ लोग अच्छा लेते हैं, कुछ बुरा लेते हैं, कुछ लोग इन सारी चीज़ों और कोशिशों को देख कर कहते अच्छा दूसरे इतना अच्छा करें हम भी करते हैं, और कुछ कहते हैं हमारे तो इनबॉक्स ही सारे भर दिए जाते हैं इतनी एक्टिविटीज़। और माशाल्लाह तहदीस नेमत पे कहूँगी कि इस साल हंड्रेड्स में डेली एक्टिविटीज़ मिलती हैं और इसमें कुछ सेलेक्ट करके दी जाती हैं, और सिर्फ आप वो एक्टिविटीज़ को देख लें और उसके अंदर के जेम्स को देखें तो आधा पारा तो उसी से समझ आता है। तो ये आपकी मेरी सोच है कि हम इन चीज़ों को कैसे लेते हैं। दिल में किसी चीज़ की कदर नहीं होती ना तो बंदा उस काम के करने वाले के ऊपर ही बुरी बातें घड़ता है, और अल्लाह के नबियों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब ऐसी बातें लोगों से सुनते होंगे। अल्लाह कहते हैं आपने दिल में अल्लाह करें, बल्कि अब सब जान लेंगे कल को के कौन झूठा और शेखी खोर था। बेशक हम इनकी आजमाइश के लिए ऊँटनी भेजेंगे, पस है सवाले तो इनका मुंतजिर रह और सब्र कर, हाँ इन्हें खबरदार कर दे कि पानी इनमें तकसीम शुदा है। वही नाकतुल्लाह के बारे में जो कमी बेशियां लोगों ने की उसका जिक्र है। हर एक अपनी बारी पर हाजिर होगा। उन्होंने अपने साथी को आवाज दी जिसने ऊँटनी पर वार किया और इसकी कूंचें काट दी, बस क्यों कर हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। यानी जब लोग मौजज़ों की और नेमतों की कदर ना करें तो समझ लीजिए अजाब को बुला रहे हैं। हमने इन पर एक चीख भेजी, बस ऐसे हो गए जैसे कांटों की ऊंधी हुई बार। और हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, बस कोई है जो नसीहत कबूल करे? जवाब क्या आ रहा है अंदर से, ये आप और मैं खुद देखें। और हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, बस कोई है जो नसीहत कबूल करे? कौम लूत ने भी डराने वालों को झुटलाया। झुटलाना तो कौमों की आदत होती है, आज उम्मत मुस्लिमा कोई नया काम तो कर नहीं रही, लेकिन इसकी शान ज्यादा ना, इसलिए इनको पकड़ भी ज्यादा होगी। बेशक हमने इन पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेजी, सिवाय लूत अलैहि सलाम के घर वालों के, इन्हें हमने सहर के वक्त निजात दी, और अपने एहसान से हर शुक्रगुजार को हम इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन लूत अलैहि सलाम ने इन्हें हमारी पकड़ से डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वाले के बारे में शक को शुबा किया और झगड़ा किया, और इन यानी लूत अलैहि सलाम को इनके मेहमानों के बारे में फिसलाया। बस हमने इनकी आंखें अंधी कर दी और कह दिया कि मेरा डराना और मेरा अजाब चखो, और यकीनी बात है कि इन्हें सुबह सवेरे ही एक जगह पकड़ने वाले मुकर्रर अजाब ने गारत कर दिया। बस मेरे अजाब और मेरे डरावे का मजा चखो। आप नोट करें सूरत की शिद्दत, एक एक आयत ऐसे लगता है कि जलजलों को साथ लेके आ रही है। और यकीनन हमने कुरान को पिंदोवास के लिए आसान कर दिया, बस क्या कोई है नसीहत पकड़ने वाला। और फिरौनियों के पास भी डराने वाले आ गए, उन्होंने हमारी तमाम निशानियां झुटलाईं, बस हमने इन्हें बड़े गालिब कवि पकड़ने वाले की तरह पकड़ा, क्योंकि इतना बदशरफ भी कला शदीद। जब अल्लाह पकड़ता है ना, तो फिर पकड़ने का भी हक अदा करता है। ए कुरैशियो, क्या तुम्हारे काफिर इन काफिरों से कुछ बेहतर हैं, या तुम्हारे लिए अगली किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है, या ये कहते हैं कि हम गलबा पाने वाली जमात हैं? अन करीब ये जमात शिकस्त दी जाएगी और पीठ देकर भागेगी। इसीलिए कुरान नहीं सुन सकते थे मक्का वाले, क्योंकि हर आयत उनको अपने खिलाफ दिखती थी। बल्कि क्यामत की घड़ी इनके वादे का वक्त है, और क्यामत बड़ी सख्त और कड़वी चीज़ है। जी, क्यामत क्या है? कड़वी। कड़वा तो खाना पानी होता है। क्यामत को यहाँ क्या कहा गया, देख लीजिए आयत 46 को, बले सातु मौईदुहुम वस्सातु अदहा व अमर। जी, कड़वी सख्त चीज़ है, सब टेस्ट खत्म हो जाएंगे जो दुनिया में गुनाहों के नाम पे लिए होंगे। बेशक गुनाहगार गुमराही में और अजाब में है, जिस दिन वो अपने मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, और इनसे कह दिया जाएगा दोजख की आग लगने के मजे चखो। अल्लाह अकबर, क्या वक्त होगा वो। बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर अंदाजे से पैदा किया, और हमारा हुक्म सिर्फ एक दफा का एक कलमा ही होता है, जैसे आंख का झपकना। और वो कलमा क्या है? कुन फयकुन। अल्लाह सिर्फ कुन कहते हैं और काम हो जाते हैं। और हमने तुम जैसे बहतेरों को हलाक कर दिया, बस कोई है नसीहत लेने वाला? जो कुछ उन्होंने अमाल किए हैं सब नामे अमाल में लिखे हुए हैं, इसी तरह हर छोटी बड़ी बात भी लिखी हुई है। यकीनन हमारा डर रखने वाले जन्नतों और नहरों में होंगे, रास्ती और इज्जत की बैठक में कुदरत वाले बादशाह के पास। किधर? फी मक़दि सिदक निंद मलीक के मुक्तदिर। पीछे पढ़ चुके हैं कदम सिदकिन सूरत यूनुस में, फिर लिसान सिदकिन पढ़ा हजरत इब्राहिम के नाते से, और यहाँ है मक़दि सिदकिन। बहुत खूबसूरत बैठक। अल्लाह ने अपने अच्छे प्यारे बंदों के लिए जो महफिल सजाई है जन्नत में, उसकी तरफ इशारा है। और फरिश्तों की माहियत, बहुत एलिवेटेड प्लेस, कोई रिजॉर्ट भी क्या दुनिया में होगा। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी इस इज्जत और सच्चाई की जगह पर जगह दे, मलीक मुक्तदर VIPs जहाँ होंगे, बल्कि VVIIIPs जितना लगा सकते हैं उतने को लगा लीजिए। तो ये थी सूरत कमर। मेरा तो दिल हिल गया, कितनी बार ये जुमला मैंने आपके सामने रखा, और आपने सुना कि कुरान नसीहत के लिए आसान है, और कितनी दफ़ा हमने ये जुमला सुन लिया और बोल दिया कि फिर भी झुटलाते रहोगे, फिर भी ना मानोगे, तो फिर अभी भी ना माने तो कब मानेंगे? क्यामत करीब आ चुकी है, इस पूरी सूरत में ये रंग है। ना मानने वालों पर मौजजात भी असर होते हैं। आज कुरान जैसा मौजजा ना दिलों को बदलेगा तो कौन बदलेगा? कुरान समझने वालों के लिए आसान है। आज के बाद मत कहिएगा कुरान मुश्किल है, और जिसके रास्ते में मुश्किलें आती हैं ना, वो खुद ही आसानियाँ भी कर देता है। अल्लाह शुक्रगुजारों को बेहतरीन बदले देता है। इंसान का हर छोटा बड़ा अमल इसकी किताब में दर्ज हो रहा है। अल्लाह आपको मुझे इस पे अमल की तौफीक दे। आगे है जी वो खूबसूरत सूरत जिसको सूरत अर-रहमान कहते हैं। अल्लाह के नामों पे एक सूरत, पहले फातिर पढ़ी अब अर-रहमान। 55 नंबर सूरत और 78 आयते हैं। पूरी सूरत पढ़ने के दौरान आप रिदम महसूस कीजिएगा, ऐसे लगता है कि अल्लाह की रहमत का ठाठे मारता हुआ समंदर है। तसव्वुर में लाइए, अल्लाह तआला के तीन नाम जिनको जाती नाम कहा जाता है, अल्लाह, और इसी तरह रब और अर-रहमान, उन्हीं में से एक नाम है, बाकी सब नाम इसी में से डिराइव्ड है। और देखिए किस नेमत का जिक्र है इस दुनिया में अल्लाह के रहम का सबसे खूबसूरत इजहार अर रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्स वल कमर बिहुस्बान। रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। चार बड़े बड़े हकायक हैं सूरत के आगाज़ में। अल्लाह के नामों में से बेहतरीन नाम अर रहमान। अल्लाह ताला ने जो कुछ सिखाया उसमें चोटी का इल्म है कुरान, तो अल्लमल कुरान। और सारी मखलूकात में से सबसे बड़ी मखलूक खलक अल इंसान, उसका जिक्र। और इंसान की सारी सलाहियतों में सबसे बड़ी सलाहियत अल्लमहुल बयान, बोलने की ताकत। चार बड़ी बड़ी चीज़ों के तذکرے से ये सूरत शुरू होती है। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन अपने नाम के साथ, बेहतरीन कलाम और बेहतरीन इंसान और उसकी बोलने की कैफियत के साथ इस कुरान को पढ़ने का हुक्म देते हैं। और याद रखिएगा, रहमान का इस दुनिया पे सबसे बड़ा रहम अल्लमल कुरान। आज भी जो लोग कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, वो अल्लाह के रहम में आ जाते हैं। कभी ये लोगों को पता तो चल जाए, फिर तो भागेंगे। तो इंसान को कहा कि तुम्हारी चोटी की सलाहियत कुव्वत बयान का इस्तेमाल फिर गलत काम के लिए नहीं होगा। आज तक जुबान पे क्या था, गाली थी के गलोच थी के गाने के बोल थे। आप देखेंगे जब आप लफ्जी तर्जमा याद कर लेते हैं ना कुरान का, तो उठते बैठते आपके लबों पे कुरान के लफ्ज़ होते हैं। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये वक्त लाए। और अल्लाह ताला का ये सिफाती नाम भी और बाज़ कहते हैं असल भी है। अल्लाह ताला की वसी और इज़ रहमत सब मखलूकात को झांपे हुए। और रहमान फोलान जोश है इसमें, रहीम में कॉन्टीन्यूटी है। हम सूरत फातिहा में पढ़ चुके। फिर इससे देखिए, कुरान बेहतरीन कलाम है, हर किस्म के उलूम का नुक्ता अरूज। आप ये नहीं कह सकते अब मैं कुरान पढ़ूँ, मैं तो मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। जी पढ़ कर देखिए, आप खुद बताएंगे आपने क्या पढ़ा। माँ के रहम से जोड़ दिया अल्लाह ने अर्रहमान को, बेहतरीन मखलूक है इंसान। तो अल्लाह इंसान की इस कुव्वत गोयाई यानी बोलने की ताकत का बेहतरीन शुक्र करना सिखाते हैं। और वो क्या कि इसको कुरान में खपा दो, ये कल्चर बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। क्योंकि पीछे की आयतों में और सूरतों में कितनी दफ़ा देखा है, जब लोग खामोश रहे तो बिदात आम हुई और कुरान पीछे चला गया, सुन्नत पीछे चली गई। सही बुखारी की रिवायत है 5027, यानी पिछले चार हकायक को जमा करें ना, तो नतीजा इस हदीस में लिखा हुआ है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए। जी अबू दाऊद में और तिरमिज़ी में भी यही रिवायत है। तो फिर आप इस वक्त ख़ुद को बेहतरीन समझ रहे हैं। और अल्लाह करे ये सिर्फ दौरे कुरान तक का ना हो सफ़र, आगे तक चले। अब कुरान के तذکرے के बाद कायनात की बातें। अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान, आफ्ताब व महताब यानी सूरज और चाँद मुकर्रर हिसाब से हैं, और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखी यानी अदल और इंसाफ, ताकि तुम तोलने में तजावुज़ ना करो। कुरान बंदे को अदल परस्त भी बनाता है और अपने लिए जो पसंद होता है वो दूसरे के लिए पसंद करना सिखाता है। इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तोल में कम न दो। और इसी ने मखलूक के लिए ज़मीन बिछा दी जिसमें मेवे हैं और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं, और बुस वाला अनाज और खुशबूदार फूल हैं। बस इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को छुटलाओगे। 31 31 बार ये जुमला आएगा इस सूरत में। सुन लीजिए रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर से, बज़ार इब्ने जरीर इब्ने मुंजर और दार कुतनी की रिवायत है। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने सूरत अर्रहमान खुद तिलावत की या फिर आपके सामने पढ़ी गई। आपने लोगों से कहा, क्या वजह है कि तुम वो जवाब नहीं देते जो मैं सुन रहा हूँ, जैसा जिन्नों ने अपने रब को दिया था। लोगों ने अर्ज़ किया, वो क्या जवाब था? तो आपने फरमाया, जब मैं अल्लाह का इरशाद फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पढ़ता, तो जिन इसके जवाब में कहते थे, ला बिशय्यि मिन नेमति रब्बिना नुकज़्ज़िब, हम अपने रब की किसी नेमत को नहीं झुटलाते। तो आपने इस दुआ को याद भी करना है, और अभी तो उर्दू में कहते रहें कि नेमतों के ऊपर शुक्रगुजार बन जाओ। इसने इंसान को बचने वाली मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरी की तरह थी, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। बस इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वो रब है दोनों मशरिकों का और दोनों मगरिबों का। बस जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इसने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, इन दोनों में एक आड़ है कि इससे भर नहीं सकते। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। इनमें से मोती और मूंगे बरामद होते हैं, बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। और अल्लाह ही की मलकियत में हैं जहाज, जो समंदरों में पहाड़ों की तरह बुलंद चल फिर रहे हैं, बड़े बड़े शिप। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। जमीन पर जो हैं सब फना होने वाले हैं, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज्जत वाली है वो बाकी रह जाएगी। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। सब आसमानों जमीन वाले इसी से मांगते हैं, हर रोज़ वह एक शान में है, रोज़ उसको नए काम है। अल्लाह ताला आपकी कायनात के इंतजाम को चला रहा है, आपके बुजुर्गों और बेचारे कब्रों में गेवों को पुकारते हो। बस अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जिन्न और इंसानों के गिरोह हो, अन करीब हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएंगे। फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ए गिरोह जिन्नात और इंस, अगर तुम में आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाने की ताकत है तो निकल भागो, बगैर गलबे और ताकत के तुम नहीं निकल सकते। पूरा जोर लगा लो, तरक्की कर लो, बड़े बड़े हिबल बना लो और जो भी कर करा लो, लेकिन तुम अल्लाह की कुदरत से और उसकी दस्तरत से बाहर नहीं जा सकते। और आज देखिए, सितारों पे कमंदे डालने वाले भी बेबस हैं अल्लाह के हुक्मों के आगे। बहुत कम लोग हैं कि जो अल्लाह ताला के आगे अपने आप को बड़ा कर सके। वादे तो बड़े हैं बड़ी बड़ी ताकत बनने के और खुद को अल्लाह के आगे रखने के, लेकिन बात यह है कि जितना ज्यादा लोग अल्लाह से दूर भागते हैं, अल्लाह ताला उनको और दूर कर देता है, और जो अल्लाह के करीब आना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको अपने करीब ले आते हैं। बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। फिर जब आसमान फटकर सुर्ख हो जाएगा जैसे कि सुर्ख चमड़ा, फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस दिन किसी इंसान और किसी जिन से उसके गुनाहों की बाज बरस न की जाएगी। क्यों? इसलिए कि सब कुछ तो नामे आमाल में लिखा हुआ है। फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे। गुनाहगार सिर्फ हुलिये से ही पहचाने जाएंगे और इनकी पेशानियों के बाल और कदम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह को झुकाना आता है इंसानों को। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झूठा जानते थे, इसके और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान चक्कर खाएंगे। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इस शख्स के लिए जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा, दो जन्नतें हैं, वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान। आज रमजान की इन जाती घड़ियों में अल्लाह से उसका खौफ मांग लीजिए, क्योंकि आपको एक नहीं दो जन्नतें मिलेंगी। बाय वन गेट वन फ्री नहीं है, दोनों फ्री हैं, शर्त है कि इस दुनिया में पे कर दीजिए। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। दोनों जन्नतें बहुत सी टहनी और शाखों वाली हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में दो बहते हुए चश्मे हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के मेवों की दो किस्में होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जन्नती ऐसे फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर यानी अंदर के कपड़े दबीस यानी मोटे रेशम के होंगे, और दोनों जन्नतों के मेवे बिल्कुल करीब होंगे। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। वहां शर्मीली नीची निगाहों वाली हूरे हैं जिन्हें इनसे पहले किसी जिन्न और इंस ने हाथ नहीं लगाया। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। हूर में अगर शर्म है तो औरत में शर्म क्यों ना हो। वो हूरे मिसल याकूत और मूंगे के होंगी। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान। जो किसी के साथ नेकी करता है दुनिया में भी उसका बदला पाता है और आखिरत में तो पाएगा ही। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। और इसके सिवा दो जन्नतें और हैं। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जो दोनों गहरी सब्ज स्याही माइल हैं, बॉटल ग्रीन। बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें से दो जोश से उबलने वाले चश्मे हैं, बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में मेवे और खजूर और अनार होंगे, बस अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनमें नेक सूरत खूबसूरत औरतें हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। गोरी रंगत की खूबसूरत यानी हूरें जन्नती खेमों में रहने वालियां हैं, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इनको हाथ नहीं लगाया किसी इंसान या जिन इससे कबल वर्जिन, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। सब्स मसनदों और उम्दा फर्शों पर तकिया लगाए हुए होंगे, बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तेरे परवरदिगार का नाम बबरकत है जो इज्जत और जलाल वाला है, तबारक अस्मु रब्बिक ज़िल जलाली वल इकराम। तो ये थी सूरत अर रहमान। क्या सीखा? इंसान पर अल्लाह तआला के एहसानात की एक झलक है, और अल्लाह के सिवा सब कुछ फना होने वाला है। फिक्रे आखरत और इंसान, कितनी फिक्र है आज मुझे आपको। गौर व फिक्र और तदब्बर की दावत, और जन्नत पाने वाले लोग कितना पढ़ते हैं सूरत अर रहमान को, लोग गौर कितना करते हैं। लोगों ने बीमारियों के इलाज इससे करना चाहे, कैंसर के टोटके ढूंढ लिए, लेकिन अगर एक बार इसको गौर से पढ़ लें और बार बार नेमतों की तस्कीर को देख लें, तो फिर कभी सरकशी ना करें इंसान, कभी इंसान अपनी इस कुव्वते गोयाई को गलत चीज़ों में ना डाले। अल्लाह ने क्या कायनात को खूबसूरत तरीके पर रखा। आप देखिए किस तरह कायनात का बैलेंस है। 1 मिली सेकेंड का हल्का सा बैलेंस चेंज किया जाए तो कायनात तबाह हो जाए। फलों के रंग देखिए, आज फ्रूट चाट बनाते हुए आपने इन फलों को सोचना है जिसका जिक्र इधर हुआ, और ये सिखाया कि नेमतें मैंने दी हैं, अब तुमने फ्लॉन्ट नहीं करना, ये नाशुक्री है। बाकी तुम्हारी नेमत को देखकर हसद करेंगे। हर नेमत को अल्लाह से जोड़ें, जिस नेमत को अल्लाह से जोड़ देंगे वो जन्नत में आपको वापस मिल जाएगी। और अल्लाह ताला सिखा रहे हैं कि हर लम्हे इस कायनात में तब्दीलियां हो रही हैं, तुम किस सुस्त होके बैठ गए। उठो, सोचो अपने नामे अमाल को, सिर्फ सो सो के ना गुजार दो, और अल्लाह का खौफ लेकर चलोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरी देगा। और मुझे ऐसे लग रहा था आयत 39 और उससे आगे की आयतों को पढ़ते हुए कि जिससे एंडलेस सप्लाई है। आईने में एक आईना रखिए ना, तो अक्स बनते ही जाते हैं। जन्नत की नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी, कभी वहाँ बोरियत नहीं होगी। दुनिया में फल भी खाते हैं तो छिलके हैं और गूदा है, इवन अनार जैसी चीज़ को कैसे अल्लाह ने पैदा किया और प्यारा सा बना के पैक किया। वहाँ कुछ नहीं होगा, जितना दिल करेगा खाएंगे। एक चीज़ पे हो सकता है इतराज़ हो, 2-3 बार हूर का लफ्ज़ आ गया, ये क्या? तो याद रखिए, हूर उसको मिलेगी जिसके अंदर बहुत तकवा होगा, और औरतों के दिल में कुछ जेलसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हूरें गुलाम होंगी। अल्लाह उनको औरतों के इस साथ कैसे जोड़ता है कि औरतें तो मेहनत करके आईं। सवाल हुआ अल्लाह के नबी, हूरों के होते हुए हमें कौन पूछेगा? आज भी शायद जहनों में ये सवाल उठे तो फरमाए कि जन्नती औरत के आगे हूर की क्या औकात है। जन्नत की औरत तो मेहनत करके आपकी तरह रातों को जाग जाग के, दिनों को जाग जाग के वहां जाएगी, उसको बहुत कुछ मिलेगा, और जेलसी के जज्बे नहीं होंगे। वो ऐसी नहीं होगी जैसी औरत होगी, वो तो एक दिल लुभाने वाली चीज़ है, क्योंकि जन्नत में बाजार भी बहुत से हैं और आपने शॉपिंग भी करनी है, और मगरिब हो रही है और आप करे घर जाना है, मियाँ सबको खाना देना है, वो हूर खिला लेगी पिला लेगी। हूर तो एक लाइनिंग है, औरत तो ऊपर का कपड़ा है खूबसूरत, तो जन्नती औरत के हुसन के आगे हूर मांद पड़ जाएगी। पढ़िए जाके आप जन्नत की औरत का बयान, इकबाल केलानी सीरीज में जन्नत के बयान में पढ़िए। अगर जन्नत की औरत झांक ले दुनिया में तो उसके हुसन के आगे सूरज मांद पड़ जाए, उसके दुपट्टे पे लगे हुए नगीनों के आगे रोशनी मांद पड़े, तो आप बहुत कीमती हैं। आज पढ़िएगा इस चैप्टर को और आपका दिल खुश होगा और तलब भी पैदा होगी। हम हर वक्त नेगेटिविटी में पता नहीं क्यों रहते हैं, ये है वो है। बाकी शौहर वही चाहिए जो दुनिया में है, सिर्फ रिफाइंड फॉर्म में। एक औरत के लिए क्यों नहीं यहाँ कुछ कहा गया? लोग पूछते हैं, मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ इसलिए कि औरत की हया का तकाजा। बेटे तो दिन रात कहते हैं अम्मा शादी कर दो, कौन सी लड़की आएगी, कभी बेटियों ने भी कहा? ये इल्ला माशाल्लाह आज के दौर आ जाए तो और बात है। तो याद रखिए कि औरत को वहाँ बहुत कुछ मिलेगा, उसके मर्द को इल्ला पता नहीं क्या बना देगा, पता नहीं हैंडसम होगा और क्या होगा, दुनिया में जो भी है उसको गवारा कीजिए, कल वहाँ मिलेगा। और एक आखिरी बात कह के अगली सूरत पे जाऊंगी। इतना कुछ जन्नत का पढ़ा सुना, और अल्लाह सुबहाना तला कहता है कि तुम उसको लेना चाहते हो, और आगे से जवाब ही कोई नहीं, खामोशियाँ ही खामोशियाँ। अगर आज नासा वाले एक अनाउंसमेंट करें, एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर हुआ है जहाँ दूध की नहरें, पानी, खाने पीने सब कुछ है, बस शर्त यह कि लिमिटेड है और कीमती बहुत है। कितने लोग हैं जो ये सौदा ना करना चाहेंगे, कितने लोग हैं जो जाना ना चाहेंगे। बस जन्नत के बारे में पढ़कर आपके मेरे दिल में कितनी तलब आई, इसको मैं और आप खुद सोच सकते हैं। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से इस जन्नत के काबिल बना दे। आगे रह गई दो सूरतें, एक है वाकया और एक है हदीद। ये दोनों ही सूरतें आपको मुझे भागने और अपने दुनिया में नेकियों की स्पीड को तेज़ करने का हुक्म देती हैं। पहले सूरह वाकया पढ़ेंगे, फिर इसमें से इंशाल्लाह एंड पे मॉरल्स एंड लेसन्स होंगे। 56 नंबर की सूरत है, 96 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़ातिल वाक़िया लैसा लिवक़्तिहा काज़िबा हाफिज़तुर राफिया। क़यामत का झटका सारी तरजीहात को बदल देगा। जब क़यामत कायम हो जाएगी, जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि ज़मीन जलजले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, फिर वो मिसल परागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम तीन जमातों में हो जाओगे। दाएं बाजू वाले, सो दाएं बाजू वाले की खुश नसीबी का क्या कहना, अस्हाबुल यमीन राइट हैंडेड, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या कहना और उनका क्या ठिकाना, और आगे वाले तो फिर आगे ही वाले हैं, साबिकून असाबिकून। अस्हाबुल यमीन 33% वाले, साबिकून असाबिकून पोजीशन होल्डर्स, दोनों का फर्क देख लीजिए। वही तो मुकर्रब लोग हैं, प्रोटोकॉल देखिएगा। मैदाने महशर में ले जाया गया आपको मुझे तसव्वुर में, असहाबुल शिमाल में तो अल्लाह किसी को ना करे, जो बदनसीब हैं, जो अर्श के बाएं जानिब खड़े होंगे, जिनके लोगों को नामे अमाल बाएं हाथ में मिलेंगे। ये वो लोग थे जो नेकी की राह में चले ही नहीं, खड़े के खड़े रह गए, मट्टी के मादू, बिल्कुल पेल, कोई एक्सप्रेशन नहीं था इन चीज़ों को सुन पढ़ कर भी, और ठिकाना जहन्नुम। दूसरा गिरोह है असहाबुल यमीन, खुश नसीब खुश बख्त। यू आर सो लकी, कहते हैं लोग, कहना नहीं चाहिए, लकी ब्लेस्ड कहिए, यू आर सो ब्लेस्ड। आम मोमिनीन हैं ये, मीडियोकर्स हैं, कॉमन लोग हैं, अर्श के दाएं जानिब खड़े होंगे, नेकी की राह पर चले थे पर भागे नहीं, नामे अमाल मिलेगा दाएं हाथ में, ठिकाना जन्नत है लेकिन अपग्रेडेड नहीं। आगे है वो लोग जो आज इस पारे के साथ लेके चल रहे हैं, अस्साबिकून अस्साबिकून, खासुल खास VVIPs, ज्यादा बावक्कत, जिन्होंने दीन को ज्यादा वक्त दिया, जिन्होंने स्किल्स दी, मुकर्रब मोमिनीन, अल्लाह के VIPs, अल्लाह के क्लोज, अल्लाह के पास रहने वाले, जिनको हर वक्त ही अल्लाह का दीदार होगा। आज एक झलक देखने को लोग तरसते हैं, उन लोगों की जिनसे मोहब्बत करते हैं, वह जन्नती तो फिर अल्लाह के पास रहेंगे, अर्शे इलाही के सामने खड़े होंगे। ये वो थे जो नेकी की राह में दौड़ने वाले थे, इनको नामे माल दाएं हाथ में दिए जाएगा और इनके ठिकाने आला जन्नत में होंगे। आपने मैंने कहाँ जाना है, अपने आप से खुद पूछते हैं हम सब, क्या वाकई मेरा गुमान क्या है। साबिकून अलवलून बनना है तो फिर करना पड़ेगा वो काम जो इस्लाम के लिए आज करना है। जब इस्लाम गरीब था, अजनबी था, जब लोगों ने इस्लाम को छोड़ा, इन्होंने थामा, ये नेकियों को आगे बढ़ते और बढ़ाते थे, ये अपने दौर के मुहाजिर और अंसार बने। ये वो लोग हैं कि जो इस्लाम को आगे डालते रहे और माशरों के रिवाज और रस्मों को पीछे करते रहे, और ये इस्लाम को तब थामते हैं जब इस्लाम गिरा होता है। माहौल जिनको नहीं बदलता, ये माहौल को बदलते हैं। ये सहाबा में भी होंगे, अम्बिया शहदार सिद्दीकीन में भी होंगे, और आज हमारे लिए भी हो गए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस्लाम के वो कतरे बना दे जो हमें अल्लाह तक पहुँचा दें। बेहतरीन लोगों को वहाँ बेहतरीन नेमतें मिलेंगी, बहुत खूबसूरत, लेकिन इसके बरक्स अधूरी कोशिशें करने वाले नाकाम होंगे। सबसे ज़्यादा नाकाम तो असहाबुल मशमा, जो साबिकून बन सकते थे लेकिन सुस्तियों के मारे रह गए। इनकी हर तर्मी ने इन्हें साबिकून न बनने दिया, ऐसे लोगों ने इंजाम को भुला दिया था। इनकी कोशिशें सिर्फ दुनिया की ऐशो इशरत के लिए थी, यानी ये दुनिया में साबिकून न साबिकून थे। अल्लाह हमें इस नकदरेपन से बचाए। नेमतों वाली जन्नतों में हैं, बहुत बड़ा गिरोह अगले लोगों में से होगा और थोड़े से पिछले लोगों में से। ये लोग सोने के तारों के बुने हुए तख्तों पर होंगे। देख लीजिए पैकेज कितना फ़र्क है, 5-6 स्टार को ले लीजिए और 1-2 स्टार को, क्या फ़र्क होगा। क्या जन्नतियों में भी दो किस्म के दर्जों के फ़र्क हैं, एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। इनके पास ऐसे लड़के होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे और आमदोरफ्त करेंगे, आप खोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती भी शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अक्ल में फतूर आए, और ऐसे में वे लिए हुए जो इनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो इन्हें मरगूब हों, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है इनके अमल का, ना वो वहां बेहुदा बात सुनेंगे ना गुनाह की बात, यानी वहाँ कोई डांट डेबड़ गाली गलोच नहीं होगी, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज़ होगी। और दाएं हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, दाएं हाथ वाले अब सेकंड दर्जे के लोग। देखे साबिकून अलवलून की क्या खूबियां देखी, आला दर्जे के ईमान वाले वो कौन है जो दीन के लिए ख्वाहिशात को कुर्बान करते थे, दीन के लिए कुर्बानियां देते थे, दीन के मुजाहिद थे, हर दौर के मुहाजिर और अंसार, दीन के लिए दुनियावी फायदे छोड़ने वाले, नेकी की राहों पे भागने दौड़ने वाले, नेकी के रास्ते देखते भी थे और दिखाते भी थे, हुक्म मिलते ही अमल करने वाले, पहले से ही मुंतजिर और तैयार, और दीन के कामों को छोड़ने का वो सोचते भी नहीं थे। अल्लाह आपको मुझे साबिकून साबिकून बना दे, शर्त ये कि हम इधर ये काम करें। इसके बरक्स आज हमारा हाल क्या, आप देखिए पैदाइशी हालत मौरूसी मुसलमान, माँ बाप मुसलमान थे इसलिए मुसलमान है, आज कमज़ोर मुसलमान बन के जी रहे हैं, शौरी ईमान की कमी है, अधूरी कोशिशें हैं, थोड़ी सी कोशिशों पे बड़े राजी, और चूंकि बहुत कम लोग हैं तो हमें ही लोग बड़ा नेक कहते हैं। सिर्फ फ़राइज़ की सत्ता पे जीने वाला आज का मुसलमान, जान माल और औलाद अल्लाह की राह में नहीं दुनिया की राह में लगाने वाला मुसलमान, निफाक और कुरान से दूर मुसलमान, जिक्र इलाही और खशियत इलाही की कमी वाला मुसलमान, इस्लाम और मुसलमानों के दर्द से खाली मुसलमान, सर्द मोहरी और सख्ती और दिलों के जमूत का शिकार मुसलमान, दुनिया की दौड़ में तेज मुसलमान, सब के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के अपना हिसाब करें हम, करना कि आज के बाद गोल कि असहाबुल यमीन से उठकर साबिकून असाबिकून में ढलना। इस पे एक सेमिनार है न्यू जर्सी में चंद साल पहले हुआ था, क्योंकि हमने थोड़ी को टारगेट नहीं बनाना, ज्यादा को टारगेट बनाना है ताकि अल्लाह हमें अता करे क्या जिसका जिक्र आगे I-28, वो बगैर कांटों की बेरियों और तह ब तह केलों और लंबे लंबे सायों और बहते हुए पानी और बकसरत फलों में, जो ना खत्म होंगे ना रोक दिए जाएंगे और ऊंचे ऊंचे फर्शों में होंगे। हमने इनकी बीवियों को खास तौर पर बना दिया, वो बीवी हर दफा नई बीवी लगेगी, हमने इन्हें कुंवारियां बना दिया, मोहब्बत वाली और हम उम्र हैं, यानी उम्र का फर्क नहीं, सोच का फर्क नहीं, ये नहीं कि एक हंसता है तो एक रोता है, एक को दीन अच्छा लगे तो एक को दुनिया अच्छी लगे, एक गुनाहों में दौड़े और एक नेकियों में दौड़े। दाएं हाथ वालों के लिए हैं, जमे गफीर है अगलों में बहुत सारे लोग, और बहुत बड़ी जमात है पिछलों में, हर दौर में ये लोग रहे। और बाएं हाथ वाले क्या हैं, बाएं हाथ वाले गर्म हवा और गर्म पानी में होंगे और स्याह धुएं के साए में, जो ठंडा है न फरहत बख्श। बेशक ये लोग इससे पहले बहुत नाजों से पले हुए थे, सोचिए आज कितने नाज देखते हैं हम अपने और बच्चों के, और बड़े बड़े गुनाहों पर इसरार करते थे और कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा जो अगले थे, आप कह दीजिए यकीनन सब अगले और पिछले जरूर जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के वक्त, फिर तुम्हें गुमराह हो झुटलाने वालों, अलबत्ता खाने वाले हो थोर का दरख्त। बड़े मजे के खाने खाते थे, इस मजे को भी चख लो, और इसी से पेट भरने वाले हो, कांटों वाला खाना और उससे पेट भरना, अल्लाह अकबर, फिर इस पे गर्म खौलता हुआ पानी पीने वाले हो, फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह, क़यामत के दिन इनकी मेहमानी ये है। तो देख लीजिए तीन तरह के लोगों के तीन किस्म के हालात हैं, असाबु शिमाल को तो जहन्नुम में तेज़ लो मिलेगी, खौलता पानी मिलेगा, काले धुएं के साए होंगे, जक्कूम के दरख्त हैं, सख्त प्यास और शदीद अज़ाब, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। इसके बरक्स उनसे बेहतर हाल में असहाबुल यमीन है, नीचे दर्जे की जन्नत, बगैर कांटों के घने साए वाले दरख्त, पानी भी मिलेगा, फलों की परवानी भी है, बीवियां भी बाकिरा हैं, ये किसको मिल रहा है, इकोनॉमी क्लास वालों का ये पैकेज है। अब देखिए अब क्रेडिट पैकेज, ऊंचे दर्जे की जन्नत, सोने मोती याकूत के तख्त, गिलमाने खादिम और पाकीज़ा शराब, लजीज फल और परिंदों के गोश्त और हूरें, किसको मिल रही हैं हूरें, साबिकून साबिकून को। दुनिया में तुम उमरे और हज पे भी जाया करते हैं, हमें अपग्रेडेड पैकेज दीजिए, जहाँ 25 लगाना है वहाँ 50 लगा लेंगे, हमें अच्छा दीजिए, क्या हम दुनिया में थोड़े पे राजी हैं। अपना मुहासबा कीजिए, मैं और आप, हमारा क्या अमल है, क्या हम नेकी की राह में चलते हैं या दौड़ते हैं या रुके हुए, हमारे अंदर, बल्कि मैं अपने ऊपर लूंगी, मेरे अंदर नेकी की कितनी तड़प है, क्या मैं नेकियां करके थक जाती हूँ, क्या मैं नेकी के मौके तलाश करती हूँ या नेकी से दूर भागती हूँ, मेरी नीयतें इरादे और कोशिशें किस काम की हैं, मैं किस ग्रोह में शामिल होंगी क़यामत के दिन, क्या मैं अधूरी कोशिशें करके मुतमईन तो नहीं हूँ, क्या मैं साबिकून साबिकून यानी अव्वलून में शामिल होने के लिए جان مال صلاحیت اور وقت دینے کے لیے تیار ہوں. اگر یس تو مبارک ہو آپ کو, آج سے آپ کا ایک نیا دن شروع ہو گیا. آگے دیکھیے آیت 57 سے آگے کے حصے میں اللہ کی قدرت اور اس کے خالق ہونے کے بیان کے لیے چند سوالات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ شعور کو ایسے وہاں لے جاتے ہیں کہ انسان یہاں بیٹھا ہوا بھی اپنے آپ کو وہاں محسوس کرتا ہے, تب دنیا میں موجود نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا آپ سے مجھ سے سوال, ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا ہے پھر تم کیوں باور نہیں کرتے؟ پھر اچھا یہ تو بتلاؤ جو منی تم ٹپکاتے ہو, کیا اس کا انسان یعنی بچہ تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں؟ ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے عالم میں پیدا کرے جس سے تم بالکل بے خبر ہو. تمہاری یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے, پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو یعنی بیج ڈالتے ہو, اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم بالکل محروم ہی رہ گئے. اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے باطلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں, پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ تو بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنا دیا. بس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو, بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی, اور اگر تم علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے. بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ جھٹلاتے پھرو؟ ذرا سوچئے یہ نصیب ہے ہمارا اس قرآن کو جھٹلانا. لوگ پڑھیں, لوگ پڑھائیں, لوگ اس پہ مال لگائیں, لوگ اس کے لیے ادارے بنائیں, لوگ اس کے لیے کتابیں خریدیں بنائیں, اور میں اس کو جھٹلاتی رہوں, اتنی بدبخت ہوں میں. بس جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی, اب ذرا جان کنی کا منظر دیکھیے گا, اور تم اس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو. ہم اس شخص سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. ملک الموت بھی آتا ہے, فرشتے بھی آتے ہیں لیکن ہمیں نہیں دکھتے. بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو اور اس قول میں سچے ہو تو ذرا اس روح کو تو لوٹاؤ. سائنس کی ترقی ہے, مردوں کو زندہ کریں, جو روح اللہ لے جائے, بڑے بڑے ہاسپٹلز والے جائیں ملیں اور اس کو آگے واپس لائیں, نہیں ہو سکتا. بس جو کوئی بارگاہ الہی سے قریب ہوگا اسے تو راحت اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے, اور جو شخص دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو بھی سلامتی ہے تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں یعنی بچ گیا, پاس ہو گیا, شکر کر ایک سال اور نہ لگا. لیکن اگر کوئی جھٹلانے والوں میں سے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ میں جانا ہے, یہ خبر سراسر حق اور قطن یقینی ہے. پھر کرو کیا؟ فسبح بسم ربک العظیم, بس تو اپنے پروردگار یعنی عظیم و شان رب کے نام کی تسبیح کر. تو کیا سیکھا میں نے؟ آپ نے کوششوں کو تیز کرنا ہے, اپنے اپنے میں نے آگے بڑھنا ہے, لوگوں کو نہیں دیکھنا, اپنے سے آگے کو دیکھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اگلوں کو دیکھو کہ اور کیا کیا کر رہے ہیں, اور دنیا میں پیچھے والوں کو دیکھو. ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ تو اگلوں کو بلکہ ان لیڈز کو اور ماڈلز کو اور بڑے بڑے اینکرز کو دیکھتے ہیں, اور دین کے معاملے میں کہتے ہیں چلو نا فلاں سے تو اچھی ہو نا, گلے میں تو لیتی ہوں نا, چلو سر پہ تو بٹا تو لیتی ہوں نا. نہیں, یہ نہیں چاہیے. قیامت کی ہولناکیوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اس دن تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. دنیا میں نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں بہترین جزا ملے گی, بائیں بازو والے اصل میں بد نصیب ہیں, فیل ہو گئے دنیا کے اس امتحان سے, فیل ہو گئے اس کمرے امتحان سے. انہوں نے اپنے لیے کچھ بھیجا ہی نہیں تھا. اچھا, اور عالم نظام میں بے بسی ہوگی. کوششوں کو تیز کیجئے, اس دین کو پورا لیجئے, ادھورا نہیں لینا, ٹارگٹ بڑا کیجئے. آخری صورت ہے بارے کی, کوشش کروں گی پوری ساتھ پڑھ کر اینڈ پیج پہ سیرے حیصل بات کریں. یہ حیصل وہ صورت جس کے بارے میں آپ کو مجھے اپنے بارے میں صحیح اندازہ ہوگا. دوسروں کو جج کرنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھیے. متنی دور کے بھی آخر کی صورت ہے, कि जब कच्चे लोग भी ईमान के साथ आ गए, क्योंकि इस्लाम की फतूहात शुरू हुई तो कुछ कमज़ोर ईमान वाले लोग आने लगे, और इसी तरह वक्त के साथ जब पुराने लोग ढीले होने लगते हैं तो कुछ ना कुछ ईमान की कमज़ोरियाँ आने लगीं। अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत में उसको डिस्कस किया, और यहाँ से मुसब्बिहात यानी सब्बहा या युसब्बिहु से शुरू होने वाली सूरतें शुरू होती हैं। आइए अपने मुहासबे के लिए सुनते हैं। इनको सुनते पढ़ते हुए वक्त ना तो दोस्तों को सोचिएगा, ना नंदों को, और ना रिश्तेदारों में वो जो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अमूमन ऐसी सूरतों में हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द वहुव अलअज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कु समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वहुव अला कुल्ली शयइन क़दीर। जो मखलूक आसमान और ज़मीन में है अल्लाह की तस्बीह करती है। आप में भी कह लीजिए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलअज़ीम। तस्बीह के साथ ताल्लुक़ जोड़ेंगे, अल्लाह आपको मखलूक के साथ, कायनात के साथ सिंकनाइज कर देगा। वो भी तारीफ़ें करते हैं, आप भी करेंगे। और वो गालिब और हिकमत वाला है, आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी की है। वही ज़िंदगी देता है और मौत भी, और वो हर चीज़ पर कादिर है। वही पहले है, वही पीछे, वही जाहिर है, वही मख्फी, और वो हर चीज़ को बखूबी जानने वाला है। अल्लाह ताला की सिफात है। कभी दिल में किसी दीन के या अल्लाह के हुक्म के बारे में डाउट आने लगे तो इस आयत का विर्द शुरू कर दें, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वो सिफात हैं कि जिस पे हम कम ही गौर करते हैं। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ जुड़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हो गया। वो खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो इससे निकले और जो आसमान से नीचे आए, और जो कुछ चढ़कर इसमें जाए, और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला इसको खूब देख रहा है। अब आप मैं अपने बारे में जितना जानना चाहें जान लें। इस कायनात में मेरे आपके साथ क्या मामला हो रहा है, और आप और मैं किस तरह से इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं, ये अब हमारे हाथ में सोचना। अल्लाह की नज़रों से खुद को देखिए। बहुवा माँ को मई ना माँ कुन तुम, सवाल करते हैं खुद से। अल्लाह ताला तो हर वक्त हमारे साथ है, याद रखिए, 3 सिफात के साथ है। वजूद के साथ अल्लाह आसमान पे है, लेकिन ये जो हम कहते हैं ना अल्लाह ताला हर जगह है, तो वो इल्म, समात और बसारत के साथ है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश और अमाल को देख रहा है कि वो अधूरी हैं कि पूरी। क्या साबिकून अव्वलून बनने के लिए हमारे अंदर जोश जिहाद और शौक शहादत है और जज्बा इन्फाक फी सबीलिल्लाह है? ये अल्लाह के सवाल आगे आने लगे हैं, इसलिए अभी से सोच लें। क्या है कि तुम अल्लाह पर शौरी ईमान नहीं लाते? क्या है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? क्या आपके पास, मेरे पास इन सवालों के जवाब हैं? इस शौर के साथ सुनते हैं अगले हिस्से को। आसमान और ज़मीन की बादशाही उसी की है, और तमाम काम इसी की तरफ लौटाए जाते हैं। वही रात को दिन में ले जाता है, वही दिन को रात में दाखिल कर देता है, और सीनों के भेद का पूरा आलिम है। अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और इस माल में से खर्च करो जिसमें अल्लाह ने तुम्हें दूसरों का जानशीन बनाया है। बस तुम में से जो ईमान लाएं और खैरात करें, इन्हें बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। अल्लाह आपको मुझे पुकार देता है। अल्लाह को सब पता है आप में से मैं अल्लाह को क्या देते हैं, कौन क्वालिटी टाइम देता है और कौन फालतू टाइम देता है, कौन है जो बिल्कुल मैल देता है हाथों का और कौन बिल्कुल कीमती चीज़ें देता है। याद रखिए, ये किताब समझ ही उसको आती है जो बड़ा हाई IQ वाला इंटेलेक्चुअल हो। कम फहम लोगों को ये बातें समझ नहीं आती कि इस किताब को क्या समझते हैं। निसाई की रिवायत है 1583 और इसी तरह 21514 जाबिर रावी हैं। अल्लाह के नबी जब खुतबा देते थे तो अल्लाह की हमदो सना बयान करते जैसा कि उसका हक है, फिर फरमाते जिसे अल्लाह हिदायत दे से कोई गुमराह करने वाला नहीं, और जिसे वो गुमराह कर दे इसे हिदायत देने वाला कोई नहीं है। यकीन रखो, सबसे सच्ची किताब अल्लाह की और सबसे बेहतर तरीका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे बुरी चीज़ दीन में नई चीज़ पैदा करना है, और हर नई चीज़ बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। इसको अगर आप आयत 7 पर लेकर सोचें तो आपको मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि दीन में नए इजाफे करने से सच्चा दीन खो जाता है और फिर भाग दौड़ ख़त्म हो जाती है। फल्लज़ीना आमनु मिनकुम वन फकू लहुम अजरुन कबीर। तो अल्लाह की राह में अपना जान और माल खर्च करो, ये पैगाम है। अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के कामों में लगाइए। दीन को इस तरह से सीखे जिस तरह सीखने का हक है। दीन के इल्म को दूसरों तक फैलाएं। अपने माल को दीनी कामों पर खर्च करें। जायज़ा भी ले लेते हैं कि हम इस आयत के ऊपर क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं, खुद पर कितना खर्च करते हैं और अल्लाह के दीन पर कितना खर्च करते हैं। बड़ी हकीकत है कि अपने लिए ब्रांडेड चीज़ें और अल्लाह के लिए पुरानी चीज़ें, वो भी नुची पुची। दुनिया की तालीम के लिए लाखों खर्च करते हैं, कुरान की तालीम मुफ्त मिल जाए तो इट्स ओके, पैसे दे के नहीं लेंगे। घर बड़ा हो दीनी इदारों की खैर है, चटाइयों पर भी गुजारा होगा, इधर तो सोफे कुर्सियां नहीं चाहिए। सवाल सुनिएगा, तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? आप कह रहे हैं मैं लाती हूँ। देखिए सारी सूरत ईमान वालों को है, लेकिन बेअमल ईमान वाले जो जुबान से तो कह दे लेकिन दिल में ईमान ना हो। और आप जुमलों को नोट करें, वमा लकुम वमा लकुम, ये अंदाज पीछे सूरह तौबा में भी पड़ा था, यहाँ भी आ गया। तुम अल्लाह तआला पर ईमान क्यों नहीं लाते, हालांकि खुद रसूल तुम्हें अपने रब पर ईमान लाने की दावत दे रहा है। और अगर तुम मोमिन हो तो वो तुमसे मजबूत अहदो पैमान भी ले चुका। वो अल्लाह ही है जो अपने बंदे पर वाज़े आयतें उतारता है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाए। यकीनन अल्लाह ताला तुम पर नरमी करने वाला और रहम फरमाने वाला है। मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? दरअसल आसमान और जमीन की मीरास का मालिक तनहा अल्लाह ही है। तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले फी सबीलिल्लाह दिया और किताल किया वो दूसरों के बराबर नहीं, बल्कि इनके बहुत बड़े दर्जे हैं जिन्होंने फतह के बाद खैरातें दी और जिहाद किए। हाँ भलाई का वादा तो अल्लाह का इन सब से है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को इसकी खूब खबर है। कौन है जो अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज दे? है कोई जवाब? खामोशी, बिल्कुल नहीं सोच रहे। हालांकि अबू दहता ने इस आयत को सुनकर 600 दरख्तों वाला अपना बाग, जिसमें घर भी था, वो अल्लाह के नाम पे दे दिया। अल्लाह कहता है दे दो, फिर अल्लाह इसे इस तरह बढ़ाता चला जाए और इसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। क़यामत के दिन तू देखेगा कि ईमानदार मर्दों और औरतों का नूर इनके आगे आ गया और इनके दाईं तरफ दौड़ रहा होगा। नेकियों का नूर, कुरान का नूर। आज तुम्हें इन जन्नतों की खुशखबरी है जिनके नीचे नहरें जा रही हैं, जिनमें हमेशा की रिहाइश है, और ये है बड़ी कामयाबी। तो मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन दे सकता है अल्लाह को कर्ज? और अल्लाह को कर्ज की ज़रूरत है, वो तो सबको देता है। असल में अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह की राह में सदका खैरात करो, अल्लाह की राह में वो चीज़ हो जो तुम्हें पसंद हो। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, और अल्लाह की राह में माल खर्च किया, क्या एहसान किया, अल्लाह का दिया हुआ उसको दे दिया तो क्या बड़ी बात है। और अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता, बढ़ा चढ़ा कर देता है। आपने मैंने इस पर अपनी फिक्र करनी है। आप देखिए, जब इस्लाम को ज़रूरत हो और हम ना दें, और जब इस्लाम को हमारे माल की वक्त की ज़रूरत हो तो हम ना दें, तो जुर्म बन जाता है। एक वो वक्त था कि लोग ले ले के फिरते थे, इस्लाम के पीछे भागते थे, आज हम वो क्या काम कर गए। आज इस्लाम एक ऐसे हीरे की तरह जो मट्टी में मिला हुआ रुला हुआ, हमें इसकी कदर नहीं है। आज हम सबको इस बात को सोचना है कि दीन को इस वक्त मेरी कहाँ ज़रूरत है। देखिए दीन वाले असल में इल्म वाले लोग होते हैं, इल्म वाले ही असल में स्टैंडिंग आर्मी थे अल्लाह के नबी की, असाबे सुफा। तो बाकी लोगों से कोई उम्मीदें नहीं है अल्लाह को, उनसे उम्मीदें जो कुरान सुनते सुनाते और पढ़ते पढ़ाते हैं। किस हालात में आप काम कर रहे हैं, किस तरह कोर्सेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अल्लाह को पता है। आपको अल्लाह ताला हर चीज़ का बदला कल क़यामत के दिन देगा। और याद रखिए, मैदाने महशर के बाद पुल सरात पे खड़ा किया जा रहा है। आप और मैं इसको अपने लेके सोचिए, जिसको अंधेरे से डर लगता है, जो डिप्रेशन का शिकार है, जिसको फोबिया है, जो लिफ्ट में नहीं बैठ सकता, वो ज़रा सा इन आयतों को सोचे कि जब मैं पुल सरात में स्टक कर दी जाऊंगी, लिफ्ट बीच में रोक दी जाएगी, अंधेरा होगा, तो मेरा क्या हाल होगा। आइए सुनिएगा, या उमतर अल मोमिनीन वल मोमिनात यस्सा नूरुहुम बैन अयदीहिम व बि अयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम। इसके बरक्स, यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, इस दिन मुनाफिक मर्दों औरत ईमानदारों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार तो करो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें। यानी अपने नोट शेयर करना ज़रा, हम भी उसमें से कुछ ले लें। जवाब दिया जाएगा, तुम अपने पीछे लौट जाओ और रोशनी तलाश करो, फिर इनके और इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी जिसमें दरवाज़ा भी होगा। इसके अंदरूनी हिस्से में तो रहमत होगी और बाहर की तरफ अजाब होगा। पुल सरात पे मोमिन और मुनाफिक अलग कर दिए जाएंगे। अब अपनी अपनी भुगतो, जैसे किसी को किसी ऐसी मशीन में डाल दिया जाए जहाँ उसका टेस्ट होगा, अब लोग अंदर नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग इस तरह के टेस्ट नहीं करवा पाते कि जिसमें एक छोटी सी मशीन में डाल देते हैं, पता नहीं कहते क्या उसको, अल्लाह ताला बचा के रखे। तो पुल सरात का मंजर आंखों में है, मोमिनीन का हाल आगे, नेकियां साइड पे नेकियां, जहां तक मोमिन की नेकियां पहुंचेंगी वहां तक उसका नूर पहुंचेगा। कुछ लोगों का तो यमन और कहाँ तक पहुंच जाएगा, साले अमाल होंगे। मुनाफिकीन का हाल क्या होगा, नूर की दरख्वास्त करेंगे, कोरा जवाब मिलेगा कि नूर तो दुनिया में जाकर ले आओ वापस, हमसे मतलब क्या कि इस दुनिया से नूर लेकर आए, अपनी सर्च लाइटें साथ लेकर जाएं। अधूरी कोशिशें जलते बुझते नूर की रोशनी में होंगे, जो ज्यादा आंखों को जुझाती हैं। खलुसे दिल से पूरी कोशिशें होंगी तो पूरा नूर होगा। अल्लाह हमें पूरी नेकियां करने वाला बनाए। इब्ने माजा की रिवायत है 43:27 कि क़यामत के दिन मौत को लाया जाएगा और पुल सिरात पर खड़ा किया जाएगा। फिर कहा जाएगा जन्नत वालों, तो वो खौफजदा और डरे हुए ऊपर चढ़ेंगे कि कहीं ऐसा ना कि इनको फिर इनके मुकाम से निकाल दिया जाए, यानी सॉरी आपके रिजल्ट गलत थे, वापस आइए। खौफ तो होगा ना आखिर तक। फिर पुकारा जाएगा जहन्नुम वालों, तो वो खुशी खुशी से ऊपर आएंगे कि वो अपने मुकाम से निकाले जा रहे हैं। फर्क महसूस कीजिए। फिर कहा जाएगा क्या तुम इसको जानते हो, वो कहेंगे हाँ ये मौत है। फरमाया फिर हुक्म होगा तो वो पुल सरात पर ज़िबा कर दी जाएगी। फिर दोनों गिरोहों से कहा जाएगा अब तुम दोनों गिरोह अपने अपने मुकाम में हमेशा के लिए चले जाओ और मौत नहीं आएगी। तो मर के बिना चैन पाया तो किधर जाएंगे, आज कोशिशें तेज कीजिए। ये चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहेंगे क्या हम तुम्हारे साथ न थे, वो कहेंगे हाँ थे तो सही, लेकिन तुमने अपने आप को फितनों में फंसा रखा था और वो इंतजार ही में रहे और शक को शिवा करते रहे और तुम्हें तुम्हारी फजूल तमन्नाओं ने धोखे में ही रखा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ गया और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में रखने वाले ने धोखे में ही रखा। अलगरज आज तुमसे नफे दिया और न बदला कबूल किया जाएगा और न काफिरों से, तुम सब का ठिकाना दोजख है, वही तुम्हारी रफीक है और वही बुरा ठिकाना है, यानी जहन्नुम ही है तुम्हारी टेक केयरर। यहाँ चार मराहल है, फतन तुम, तरबस तुम, वरतब तुम, वगरत कुम, इंतजार करना, यानी आप कह लीजिए इफ्स एंड बट्स में पड़े रहे, डिली डेली का शिकार रहे, डाउट्स में रहे और झूठी तवक्कुआत। लेट्स सी व्हाट हैपन, चेक करते हैं, जरा सोचते हैं। ओके वेट एंड सी, कोई नेकी फौरन नहीं की। और मुनाफिक वहां मोमिनों को कह रहे हैं कि हम पार्टीज में तुम्हारे साथ नहीं होते थे, शादियों में नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा माइंड कैलकुलेटिंग था। तुम्हें अल्लाह के दीन के मौके मिले, दावत के, काम के, खिदमतों के, और तुम उस वक्त सवाल जवाब में पड़ गए। अल्लाह ने तो दुनिया में ये ऑफर्स दे दी थी लेकिन नहीं माना, तुम्हारा ऑस्ट्रेज एटीट्यूड था। तुम इस तरह आंखें बंद करके कहते थे देखना जन्नत ऐसी मिल जाएगी, तो बगैर कुछ दिए जन्नत नहीं मिलती। तुम्हें अल्लाह के वादे सच्चे नहीं लगते थे। अब देखिए अल्लाह पुकार पुकार के कह रहे और हम खामोश हैं। अगर आज कोई आपको कह दे कि लिबर्टी में आपका एक प्लॉट है, इसको दे दें, हम आपको न्यूयॉर्क में एक बड़ा घर दे देंगे, कितनी एप्लीकेशंस जाएंगी, कौन ना लेना चाहे। लेकिन आज जन्नत की पुकार बार बार मंजल्लाजी कौन कौन, और हम बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि अभी अपने कर्जे बहुत हैं, अभी अपने बोझ बहुत हैं और हमने अभी तक तो सोचा ही नहीं है। तो निफाक से निकलने के लिए आपने मैंने आज नियत करनी है, कहीं ना कहीं तो होगा। कि अब तक ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से ही डर जाएं और जो हक इन पर उतर चुका है उससे नरम हो जाएं। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, खुद से पूछते हैं हम सभी, और इन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें इनसे पहले किताब दी गई थी, फिर इन पर एक जबरदस्त जमाना गुजर गया तो इनके दिल सख्त हो गए और इनमें से बहुत से फासिक हैं। अल्लाह दिलों की सख्ती से बचाएं, सुनते ही अमल नहीं करेंगे तो दिल सख्त हो जाएगा। इल्म के साथ साथ अमल का पानी डालते रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मुझे ज्यादा से ज्यादा देगा। यकीन मानो कि अल्लाह ही जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है। अब उम्मीद दिलाई जा रही है कि गम ना करो, आज तक दिल सूखे हुए थे, इल्म का पानी पड़ा है, नेकियों की नियत करो, देखना तुम्हारे दिल कितने हरे हो जाएंगे नेकियों के लिए। हमने तो तुम्हारे लिए अपनी आयतें बयान कर दी ताकि तुम समझो। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं, इनके लिए ये बढ़ाया जाएगा और इनके लिए पसंदीदा अजरो सवाब है। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। अल्लाह ऐसे लोगों में शामिल करते हैं, इनके लिए इनका अजर और इनका नूर है। और जो लोग कुफर करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो जहन्नमी हैं। खूब जान रखो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा और जीनत और आपस में फख्रो गरूर और मालो औलाद में एक दूसरे का अपने आप को ज्यादा बतलाना है। चार चीज़ों के बदले में अल्लाह ने आपको मुझे वो रुकावटें बता दी जिससे निफाक आता है। ज़िंदगी के पांच मुख्तलिफ अदवार, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, उसी की तरजीहात यहाँ बताई जा रही हैं। जैसे बारिश और इसकी पैदावार किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर जब वो खुश्क हो जाती है तो जर्द रंग में इसको तुम देखते हो, वो फिर बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है और आखिरत में सख्त अजाब है। और अल्लाह की मगफरत और रजामंदी है और दुनिया की ज़िंदगी सिवाय धोखे के और कुछ नहीं। तो लिखिए एक जुमला, हम साबिकून नस्साबिकून में क्यों नहीं ढल जाते, इसलिए कि बचपन खेल कूद में गुजर जाता, लड़कपन में लाख और बेकार मशगूलियात की धुन है, जवानी में जीनत आराइश ज़ाहरी टीप टॉप की धुन है, उजेड़ उम्री में तफाखुर उम्बई नकु में नेमत और मादी चीज़ों पर फ़ख्र करते हैं और इतराते रहते हैं। किसका बच्चा, किसके प्लॉट, किसकी गाड़ियाँ, बूढ़े बैठ के यही गिनते रहते हैं। और बुढ़ापे में फिर तकासुर फिल्म वाली वाला औलाद, माल और औलाद को और बढ़ाने की ख्वाहिशों में है। इसके बरक्स अल्लाह ताला आपको एक बड़ी प्यारी कॉल देते हैं, बड़ा प्यारा जुमला है, साबिकु इला मगफिरत मि रब्बिकुम, आओ दौड़ो अपने रब की मगफरत की तरफ और इसकी जन्नत की तरफ जिसकी वुसत आसमान और ज़मीन की वुसत के बराबर है, पर किसको मिलेगी। ये उनके लिए बनाई गई जो अल्लाह पर और इसके रसूलों पर ईमान रखते हैं। ये अल्लाह का फजल है जिसे चाहे दे, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अल्लाह में भागने वाला बना दे, दौड़ने वाला बना दे। दुनिया में कुछ करना है, कम्पीट करना है तो उसमें करो, भाग दौड़ उधर करो, वुस्सतों वाला रब तुम्हें दुनिया में भी वुस्सतें देगा। आज दीन की तरफ भागे और ज़िंदगी तंग लगे तो समझ लीजिए कि वजह दीन नहीं दुनिया की कसरत है, इसको कम करें। अल्लाह ताला बताते हैं ज़िंदगी के हर हिस्से को इबरत के साथ गुजारो। अब आगे बताया जा रहा है कि जो मुश्किल आती है वो तो आनी थी, तुम क्यों दीन को बदनाम करते हो, किस पे आने से मुश्किल आई। माँ साहब हमें मुसीबत इन फिल अर्द, ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है ना खास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें वो एक खास किताब में लिखी हुई है, ये काम अल्लाह पर बहुत आसान है, ताकि तुम अपने फौतशुदा किसी चीज़ पर रंजीदा ना हुआ करो और ना अता करदा चीज़ पर घुमंड में आ जाओ। और घुमंड शेखी खोरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता जो खुद भी बुखल करें और दूसरों को भी बुखल की तालीम दें। सुनो जो भी मुंह फेरे तो अल्लाह बेनियाज और हमदो सना के लायक है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि तुम्हारी हर मुश्किल टेलर मेड है, ये तो आनी थी, तुम जो मर्जी करो, लेकिन हमारा मुसीबतों में अमूमन रवैया क्या होना चाहिए, तकदीर पर ईमान रखिए। किसी इंसान को वजह न करदानी है अपने ऊपर आने वाले किसी सदमे की, अपना मुहासबा करें कि कहीं मेरे गुनाह का नतीजा तो नहीं, मुसीबतों पर सब्र करें, डिप्रेशन में ना जाएं, अच्छे हालात और नेमतों में शुक्र करें और फख्र न जताएं जब कोई नेमत आ जाए। हदीस में आता है तिरमिजी 3511 अबू सलमा से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जब किसी को कोई मुसीबत लाहक हो तो इसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए कि हम सब अल्लाह के और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह मैं अपनी मुसीबतों का अजर तुझसे चाहता हूँ और मुझे तो इन पर सब्र करने का अच्छा बदला दे और इन मुसीबतों के बदले मुझे इनसे अच्छा दे, ये पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग तो कुरान पढ़ना छोड़ देते हैं कि हम पे अल्लाह ने मुश्किल डाली क्यों, तो कुरान पढ़ने वालों पे मुश्किल से बड़ी मुश्किल आ जाए वो खुश रहते हैं। यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा, इनके साथ किताब और मीज़ान यानी तराजू नाजिल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें, और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत और कुव्वत है, और लोगों के लिए भी और बहुत से फ़ायदे हैं इसलिए कि अल्लाह जान ले कि इसकी और इसके रसूलों की मदद बिन देखे कौन करता है, बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला ज़बरदस्त है। तो क्या किया नबियों ने और हमने क्या करना है, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए तीन काम रसूलों ने किए, मोजज़े और दलाइल दिखाए, किताब से ताल्लुक़ जोड़ा, शरीयत एक मीज़ान बनाकर नाफिज की। तीन काम हमें भी करने हैं आज, लोहे समाने हर्ब से जिहाद के लिए तैयारी करनी है, किताब के ज़रिए लोगों को अल्लाह से जोड़ना है यानी जिद्दोजहद भी करनी है, और भी शरीयत और इस्लामी निज़ाम को नाफिज करना है। कुछ वो करके बाकी हम करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस किताब को आम करने वाले जिहाद में खपा दे। बेशक हमने नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और हमने दोनों की औलादों में पैगंबरी और किताब जारी रखी, और इनमें कुछ तो राह याफ्ता हुए और कुछ नाफरमान रहे, यानी नबियों की नस्लों में ही आगे जाके लोगों में बिगाड़ आ जाता है। इसके बाद फिर भी हम अपने रसूलों को मुसलसल भेजते रहे, और इनके बाद ईसा इब्ने मरियम को भेजा और इन्हें इंजील अता फरमाई, और इनके मानने वालों के दिलों में शफकत और रहम पैदा कर दिया। हाँ रहबानियत, तरके दुनिया, सेल्फ इनहेलिएशन, ये तो इन लोगों ने खुद ईजाद कर ली थी, हमने इन पर वाजिब ना किया था सिवाय अल्लाह की रजा जोई के, बस उन्होंने इसकी पूरी रियायत ना की, फिर भी हमने इनमें से जो ईमान लाए इनका अजर दिया, और इनमें ज्यादातर लोग नाफरमान है। ये हैं जी बिदात जो क्रिश्चियनिटी में आई रहबानियत के नाम पे। तो याद रखिए दीन इस्लाम में रहबानियत नहीं, तरके दुनिया करना अल्लाह को पसंद नहीं है, हाथ दुनिया में रहें, दिल अल्लाह की तरफ रहें, क्योंकि इससे बिदात जन्म लेती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा दीन को सख्त करते हैं तो फिर निभा नहीं पाते, दीन में अपनी तरफ से कुछ ईजाद करने से अल्लाह की रज़ा नहीं हासिल होगी, अल्लाह की रज़ा सिर्फ इसकी इताअत से हासिल होगी। तो रहबानियत की बिदअत उन्होंने ईजाद की, आज आपके मेरे लिए क्या है कि कंट्रोल करो, अल्लाह के हुक्म के गलबा दीन के लिए जिहाद करो, दुनिया में रहते हुए दीन और आखरत के काम करो, अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, माशरे में अदल और इंसाफ कायम होगा और घरों में अमन सुकून होगा। इसके बरक्स जब आप रहमानियत के नाम पे और ख़ास तौर पे दीनदार होने के नाम पे सब कुछ छोड़ देते हैं तो शोहरों का भी दिल आपसे भर जाएगा। अल्लाह नहीं चाहता ये। असल दीन छोड़ते हैं तो बिदात और गुमराहियाँ आती हैं, करने वाले को और इंसानियत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और फितने फसाद आम होंगे। अल्लाह ताला हमें बैलेंस दीन लोगों को देने वाला बनाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आखिरी आयतें हैं, आखिरी पुकार समझ के सुन लीजिए। अल्लाह से डरते रहो और इसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा देगा और तुम्हें नूर देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे, और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। ये इसलिए कि अहले किताब जान लें कि अल्लाह के फजल के किसी हिस्से पर भी इनको इख्तियार नहीं, और ये कि सारा फजल अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसे चाहे अता करे और वो बहुत बड़े फजल वाला है। तो सूरत हदीद का तो यहाँ सिर्फ तर्जमा ही हुआ एक किस्म का। हमने ये सूरत अलग से, यानी कोर्सेज तो फुल होते ही हैं, लेकिन अलग से 2 दफ़ा पढ़ी है। एक दफ़ा अटलांटा में एक ताक रात में पूरी रात में इस सूरत को पढ़ा था, और क्या वो मंजर था, आज भी आंखों में आ रहा है। और इसी तरह इस्लामाबाद में 2 या 3 दिन का एक कोर्स था सूरत हदीद पे। हकीकत है कि ये सूरतें ही आज के दौर में सुनने और सुनाने वाली हैं। हमने क्या सीखा? हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह, हर इंसान को इसके अमाल के मुताबिक बदले दिए जाएंगे, सदका और खैरात करने वालों को अजर व सवाब मिलता है। दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल तमाशा है, और तंगी और आसानी अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह ताला हमें इस बारे में से जेम्स लेने वाला बना दे। हर शख्स अपने कसब के इवज़ रहे ना, यानी जो करेंगे वहीं पहुँचेगा हमारा जिस्म। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, भाग दौड़ कीजिए अल्लाह की तरफ। साबिकून साबिकून बनने के लिए अधूरी कोशिशों को पूरी कोशिशों में बदलना पड़ेगा। मकसद हयात बतौर इंसान अल्लाह की बंदगी, और बतौर मुसलमान शहादत अलन्नास को करने की नीयत करनी है। अल्लाह की नेमतों पे गौर व फिक्र करना है। फ़बिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और जन्नत और मगफरत की तरफ मुसाबकत कीजिए। वसाबिकु इलल जन्ना और मगफिरा, और ये यकीन रखिए कि कुरान को अल्लाह ने आसान किया है, तो कुरान सीखने की कोशिशें कीजिए अमली तौर पर। फितना बहुत बड़ा था, हल भी बहुत बड़ा। अधूरी कोशिशें छोड़िए और इस पर मुतमईन रहना छोड़िए, इसका इदराक कीजिए, यानी फैमिलीज को साथ लेकर भाग दौड़ कीजिए। ये समझना कि अधूरी कोशिशों से आला दर्जे की जन्नत मिल जाएगी, ये दुरुस्त नहीं, इसको छोड़िए। फराइज की सतह पर नहीं, अजीमत की सतह पे जिए। साबिकून अव्वलून बनने के लिए खलूस नीयत और दिल के साथ पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह कुरान और रसूल से ताल्लुक मजबूत कीजिए। शौरी ईमान लाते हुए नेकी के मौके तलाश करें, और जो मौका हाथ में उसको कभी जाने ना दें। तकवा वाली बा मकसद ज़िंदगी गुजारनी है। निफाक और दिलों का जमूद और सर्द मोहरी को ख़त्म करने के लिए कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है। हमारी जान माल वक्त सलाहियतें और सारी नेमतें अल्लाह की अता करना है, इनको अल्लाह के रास्तों में लगाना है। अपना मुहासबा करते हुए कमज़ोर मुसलमान से साबिकून साबिकून का सफ़र करना है, और इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह की नज़र हमारी कोशिशों पर है। अल्लाह ताला हमारी इन कमज़ोर सी कोशिशों को कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम।